में आप सबका स्वागत है। पिछले चार दिन में हमने अनेक 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 विषयों पर चर्चा करी। कोई एक व्यक्ति सारे विषय एक साथ दिखा सकता है? हमने बहुत सारी बातों पर चर्चा करी। कोई एक व्यक्ति खड़ा हो कि हमने पहले दिन से आज तक किस विषय पर चर्चा करी उसको कहना सकता है? कोई कोशिश करेगा तो आप बताएंगे। हमारे पांच दिन का जो कोर्स था उसको तीन भाग में बांटा था। उन तीन का नाम तो बताइए। जो हमारा पांच दिन का जो कोर्स था उसको तीन भागों में बांटा है, उनका नाम बताइए। आनंद का रहस्य, दूसरा दिव्यत्व का ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, तीसरा भाग्य बदलने की कला। ये तीन पे हमने चर्चा करी। उसमें पहला था आनंद का रहस्य, उसमें हमने चार भाग में उसको विभाजित किया। क्या चार थे? कि हम आनंद की खोज क्यों कर रहे हैं, आनंद की खोज में बाधाएं क्या हैं, हम आनंद की खोज कहां कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। उसके बाद दिव्यत्व का ज्ञान जब हमने जानने की कोशिश करी तो उसमें हमें उपस्थिति या भगवान है तो उसकी परिभाषा क्या है, उनको देखने की प्रक्रिया क्या है और ज्ञान प्राप्त करने के तीन विधियां क्या है। जब हमने अपने खुशी में बाधाएं के बारे में चर्चा करी तो खुशी में बाधाएं क्या है? ये जगत में कुछ बाधाएं हैं। ठीक है, ये एक जगत है, गुलाब जामुन के समान मीठा है, लेकिन उस गुलाब जामुन में क्या है? कंकर है, पत्थर है, मिट्टी है, या कह सकते हैं हरी मिर्च है, मिर्च डाल दी, तीखा लग गया, मीठा डालने अगर तीखा लग गया मिर्च, जो फ्लेवर नहीं चाहिए था वो मिल गया। ऐसे ही निरंतर आनंद प्राप्त करने में कुछ बाधाएं आती हैं बार बार। वो बाधाएं क्या हैं? कलयुग का एक लक्षण है कि हमारी जो याद रखने की शक्ति है बहुत कमजोर है, इसलिए हम बार बार एक ही पॉइंट को चर्चा करना चाहिए। तो बाधाएं क्या है हमारी कुछ? जन्म, मृत्यु और क्या, व्याधि, जरा और तीन क्या है, आध्यात्मिक शरीर और मन की समस्या और आदि भौतिक दूसरे जीवों के द्वारा दी गई समस्या और आदि दैविक प्रकृति के द्वारा दी गई समस्या। ये खुशी में बाधाएं हैं, इनको हम कहां और कैसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं? भौतिक प्रगति के द्वारा, विज्ञान की प्रगति के द्वारा। लेकिन हमने जाना कि विज्ञान की प्रगति से हमने बहुत कुछ प्राप्त किया और जो कुछ भी प्राप्त किया हमें कुछ टोकर मिल गया, चाहे वो मेडिकल साइंस हो या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो या फिर कंप्यूटर साइंस ही क्यों ना हो। ये सब प्रगति होने के बावजूद भी इंसान दुखी है और उसका फ्रस्ट्रेशन और उसका डिप्रेशन और उसका तनाव बढ़ते ही जा रहा है। आज से 100 वर्ष पहले कभी किसी ने तनाव का तो नाम ही नहीं सुना था। फिर हमने चर्चा करी कि अगर हमारा स्वभाव, हम क्यों आनंद की खोज कर रहे हैं, कि हमारा स्वभाव क्या है आनंदमय व्यासा, अगर वो स्वभाव है तो वो आनंद की खोज कहां पे करें? दिव्यत्व में। फिर दिव्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपस्थिति, उपस्थिति के क्या प्रमाण है कि भगवान है, दिव्य जगत है, उसका प्रमाण क्या है? याद है प्रमाण क्या है? किस आधार पे आप इस बात पे श्रद्धा रखेंगे कि भगवान है? कारण और प्रभाव, इतने कारण देख प्रभाव देख रहे हैं तो उनसे कुछ कारण भी होना चाहिए। सृष्टि और सृष्टिकर्ता, अगर सृष्टि बहुत सिस्टमेटिक चल रहा है तो पीछे सृष्टिकर्ता भी होना चाहिए। फिर हम पढ़े नियम और नियंत्रक। अगर नियम से सब कुछ चल रहा है, जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी नियम से चलती है, तो सारे के सारे प्लैनेट, सोलार सिस्टम पूरा नियम से चल रहा है, तो उसके पीछे कोई नियंत्रक भी होना चाहिए। जब छोटी से छोटी चीज में नियंत्रक होता है तो बड़ी से इतने बड़े ब्रह्मांड में कोई नियंत्रक नहीं हो पाएगा। फिर हमने बात करी उनको देखने की प्रक्रिया, उसमें हमने दो किया, कारण और प्रभाव, और दूसरा सेवा। अगर किसी बड़े व्यक्ति को देखना है तो सेवा के द्वारा, आप अपनी स्वेच्छा से किसी को अप्रोच नहीं कर सकते जब तक वो दर्शन ना दे खुश होते। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो यहां पे आ सकता है अपनी इच्छा से, लेकिन अगर हम प्रेसिडेंट को मिलने जाए तो बहुत कठिनाई, बहुत बाधाएं हुई, इतना आसान नहीं है। फिर उसके बाद हम चर्चा किए ज्ञान प्राप्त करने की तीन प्रक्रिया क्या है, प्रत्यक्ष जो कि हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, दूसरा अनुमान, अनुमान यानी अंदाजा लगाते हैं। अगर हमने उदाहरण दिया कक्षा में एक व्यक्ति फेल होता है तो हम बोलते हैं पूरी कक्षा फेल होगी, अंदाजा लगा, वो सही नहीं है, कभी कभी अंदाजा गलत भी हो जाता है, तो अनुमान जो है सही नहीं है। तो अगर हम व्यक्ति के बारे में अनुमान लगाएंगे, जैसे वैज्ञानिक लोग केवल अनुमान लगाते हैं, सोचते हैं कि ब्रह्मांड ऐसे बना हुआ, ऐसे बना होगा, शुरुआत में ऐसा हुआ होगा, वो एक केवल अनुमान लगाते हैं, लेकिन अनुमान तो सही नहीं है। अगर एक पिता को जानना है तो अनुमान नहीं लगा सकते, शायद ये मेरे पिता होंगे, शायद ये मेरे पिता होंगे, कहीं ये तो मेरे पिता नहीं, कहीं ये तो मेरे पिता नहीं। माता से पूछ के पिता का ज्ञान मालूम करता, इसीलिए शास्त्र हमारी माता है। तो किसी ने प्रश्न पूछा उसे देखे सज्जन आए थे कि शास्त्र का विश्वास क्यों करें, तो फिर हम चर्चा किए कैसे कहीं कहीं ऐतिहासिक तथ्य है जिसपे पहले लोग विश्वास नहीं करते थे, लेकिन विज्ञान ने जब उसका प्रमाण दिया तो हमको समझा अरे शास्त्रों में सही लिखा था। ऐसे कई भविष्यवाणी है जो शास्त्रों में की थी लेकिन हमको मालूम नहीं थी, जब वो सत्य हो गई तो शास्त्रों में विश्वास हो गया। तो उस प्रकार से ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम नहीं देख सकते अपनी इन दूषित इंद्रियों से, लेकिन एक समय आएगा जब हम देख पाएंगे। फिर उन शास्त्रों के आधार पर हम जाने कि भगवान कौन है, भगवान की परिभाषा क्या है, और कौन उस परिभाषा को पूर्ण रूप से किस व्यक्ति को पूरा करता है, कौन पूरा करता है उस परिभाषा, और ये जानने के बाद हम जाने कि भगवान श्री कृष्ण और अन्य देवताओं में क्या अंतर है, और कैसे मानव जीवन का लक्ष्य है अपना भगवान श्री कृष्ण से संबंध स्थापित करना। अभी ये सब ज्ञान जानने के बाद मैं आपसे पूछता हूं कि आपके हृदय में क्या प्रश्न रह गया है जिसकी पूर्ति नहीं, कौन सा प्रश्न रह गया। अभी ये मैं पूछना मुझसे कल सूर्य उदय कितने समय होगा, वो प्रश्न का उत्तर नहीं देगा, लेकिन जीवन के तत्व के बारे में ऐसा कौन सा प्रश्न आपके जीवन में जिसकी पूर्ति नहीं हुई इन चार दिनों में, जो प्रश्न आप लेके आए थे इन पांच दिनों में उसमें से कुछ प्रश्न रह गए हैं, जरूर सबके जीवन में कुछ प्रश्न होंगे। एक तो हम ही बोलते हैं भाग्य बदलने की कला, जो कि आज का टॉपिक है, और क्या प्रश्न रह गए आपके जीवन में, कुछ तो प्रश्न लेके आए हैं या ऐसे आके बैठ गए चलो पांचवा दिन पूरा करना है, आप सबके मन में कुछ तो प्रश्न होगा। क्या जानना चाहेंगे आप,
ये जन्म और मरण का जो चक्र है ये कब तक चलेगा, और इसको रोकना मतलब एक तरफ शांति की तरफ जाना क्या वो उचित है। दूसरी चीज, जैसे हमारे पास सारी इंद्रियां हैं, हर इंद्रिय का उपभोग करने में काम करता है, वो अलग बात है कि किसी चीज को ठंडा करके, आई मीन कहने का मतलब है किसी दुख को जानने के लिए पहले सुख जानिए, तब आप दुख को रिफ्रेश कर पाओगे। कंटिन्यू दुख में आप स्टेट में रहोगे तो आप दुख महसूस नहीं कर पाओगे। थोड़ा सुख आएगा बीच में, फिर दुख आता है, तो दुख फील होता है कि मुझे अब दुख हो रहा है। तो जिस तरह से पहले में सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, फिर कुछ देर थोड़ा सुख मिल रहा है, मतलब आपको ठंडा गर्म ठंडा गर्म किया जा रहा
है। तो पहला प्रश्न आपका ये है कि जन्म और मृत्यु की जो प्रक्रिया है वो कभी
खत्म हो।
और दूसरा प्रश्न क्या है?
दूसरा प्रश्न ये है कि जो अगर जो जन्म मिला है मुझे, इस जन्म में बहुत सारी खूबियां हैं, मैं अपने जीवा से बहुत तरह के स्वाद ले सकता हूँ, अपने कानों को बहुत अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करके म्यूजिक सुन सकता हूँ, मतलब कई सारी चीजें हैं। क्या उन सब चीजों को छोड़कर मैं एक तरफ शांति की तरफ चला जाऊँ?
क्या अपने जीवन में जो भोग मिल रहा है उसको भी छोड़ दूँ? कुछ तो सुख मिल रहा है, आप तो दुख दुख करके बोलते हैं कि सुख है ही नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत सुख मिल रहा है, छोड़ दूँ क्या उसको?
नहीं, सुख नहीं मिल रहा है, बट सुख पर से कैसे मिल रहा है?
मिल तो रहा है ना,
कुछ देर के लिए खुश जाता हूँ।
चलो कुछ देर तो मिल रहा है, हम तो दुख हाल बोल दिए, हाल मतलब और कुछ मिलता नहीं है, भोजनालय मदिरा नहीं मिलती, हाँ मिलती है अगर दोनों हाल साथ में है, भोजनालय में विद्या नहीं मिलती, पल्सिटल विद्या भी नहीं मिलती, भोजनालय में भोजनालय नहीं मिलता है, तो दुखालय में दुखालय मिलना चाहिए, दुख देखे इतने सुख भी मिलता है। ये भी अच्छा प्रश्न है, और क्या प्रश्न है बोलिए।
तो जी कल का टॉपिक हुआ अपना देवी देवताओं का, तो देवी देवताओं को फिर पूजा करे या ना करे?
आप कौन से देवी देवता की पूजा करते हैं?
मैं तो कृष्ण की करता हूँ, भगवान की करता हूँ, लेकिन मन में आता है कि देवी देवता नाराज हो जाएंगे,
करना चाहिए नहीं। माता जी बिल्कुल ऑनेस्ट से ईमानदारी से बताइए, कोई डर नहीं है, कोई ऐसा किसी बुरे व्यक्ति की पूजा नहीं कर रहे, देवता है, लेकिन लोगों को डर रहता है, इसलिए जिसकी मूर्ति है उनकी अगर, अरे ये नाराज हो गए तो ये नाराज हो गए तो ये नाराज हो गए, तो भी क्या करें, उनकी पूजा करें कि नहीं करें? और क्या प्रश्न माता जी?
सही गुरु कैसे मिलेगा, पहचान क्या है, कहाँ मिलेगा?
सही गुरु की पहचान क्या है, आपके मन में ये प्रश्न क्यों आया?
आजकल तो आज बिल्कुल मुझे टीवी पे देखने के बाद में सरकार गई है, आप क्या हो रहा है कि अंदर से दिल जाता है, जैसे हम पढ़ते पिता तो सुन बाबा ये कहते हैं सही गुरु हो तभी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो उस दिन मैंने आपसे कहा भी था कि मन बड़ा चंचल है, उसको संयमित करने के लिए अपने आप में उनको पढ़ने, लेकिन अगर गुरु होंगे तो शायद ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। तो उसके लिए बहुत ज्यादा मन होता है कि कहाँ से ढूंढे सही गुरु, कौन सही गुरु होगा, किसको पहचाने और किस रूप में मिलेगा, बहुत दिनों से होगी उस दिन, इसीलिए मैंने
गुरु बनना बड़ा उत्तरदायित्व है। देखो कोई मामूली इंसान इतना श्रद्धा रखता है कि गुरु चाहिए, गुरु के शरण में जाके अपना जीवन की समस्या का हल जान सकते हैं।
गीता में बाबा कृष्ण ने यही कहा है कि या तो कृष्ण भाव से होने के लिए आपके पास सही गुरु होना चाहिए। अब वो सही गुरु अभी तक हमको नहीं समझ आ रहा है।
अच्छा प्रश्न। तो गुरु को जानने की प्रक्रिया, गुरु कौन है, हा? जन्म और मृत्यु को खत्म करने की प्रक्रिया, कभी खत्म होगा, सुख को त्यागे कि नहीं त्यागे, अन्य देवता की पूजा करें कि नहीं करें। और किसी ने प्रश्न पूछा कुछ? माता जी बोल रही हैं इधर कुछ। प्रभु जी हाँ ठीक है, वहां पे दे दीजिए, चलेगा। कर्म का फल, हाँ अभी तो बच्चा जन्मा एक दिन में ही मर गया, अरे उसने कौन से कर्म किए थे इतना भुगतना पड़ा उसको। तो बच्चे ने ऐसे क्या बुरे कर्म किए थे कि एक दिन में दो दिन में मृत्यु हो गई उसको या बीमारी हो गई? तो माता जी बोल रही हैं अरे अगर रेशियो निकालेंगे तो देखते हैं इतना इतना भी बुरा नहीं कर रहे जितना दुख मिल रहा है, वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया, इतना तो दुख नहीं बुरा नहीं कर रहे जितना दुख मिल रहा है। ठीक है आप बोलिए। भगवान सो गए हैं क्या, अपना कर्तव्य भूल गए हैं क्या, थक गए हैं क्या, या सृष्टि बना के छोड़ दिया, अरे मुझसे नहीं समझता ही तो बड़ा भार है। लाइफ का कैलकुलेशन कर्म पे रहता है, लेकिन वो गड़बड़ हो जाता है। बुरों के साथ अच्छा हो रहा है, खास तौर पे कलयुग में। अमेरिका में सबसे ज्यादा लोग मांस खाते हैं, सबसे ज्यादा नशा करते हैं, सारे गलत काम वहीं पे होते हैं, और सबसे ज्यादा सुख का लगता है वही भोग करते हैं, और वही वैसे ही लोग भारत में भी हैं। ठीक है, कोई एक आध प्रश्न और कर्म को छोड़ के किसी और बारे में? आपने वो सब प्रश्न डाल दिए जो आज के टॉपिक में है, तो हमें अच्छा लगा। कोई एक और प्रश्न देखते हैं। हाँ, वो दो हाथ खड़े हुए, चलो उनसे पूछ लीजिए। तब तक आप क्या बोल रहे थे माता जी? गुरु मंत्र के लिए गुरु जरूरी है क्या? ठीक है, आगे पूछिए, बोलिए। हाँ, वो तो आपने पूरा सेमिनार एक प्रश्न में डाल दिया। फ्यूचर में आगे जाने के लिए भविष्य में क्या करना चाहिए? आप सुनने के लिए तैयार हैं? करेंगे क्या जो बोलेंगे? तो पहली चीज तो आप सबको हर गुरुवार को यहां आना पड़ेगा। हर गुरुवार को आएंगे, पूरा ज्ञान सिस्टमेटिक प्राप्त करेंगे, पूरा ट्रेनिंग लेंगे, तो गाड़ी आगे चलेगी। अगले 4 महीने में भगवद गीता के पूरा 18 अध्याय डिस्कस करेंगे, भगवान की इच्छा हुई तो। एक लास्ट प्रश्न ले लीजिए। उसके लिए तो सुख की बात, उनका राय ऐसा है कि अगर एक बच्चे की मृत्यु होगी तो वो तो बड़ा सुखी है, चलो एक दिन में मृत्यु हो गई, शायद ये उस चीज के लिए तत्पर हैं, चलो जब जल्दी से जल्दी जीवन खत्म हो जाए। हा? ऐसे भी लोग होते हैं, जीवन खत्म हो जाए। वही ये पूछे। हाँ, कितना अच्छा प्रश्न है। वो उसके सुख का मतलब अच्छे कर्मों का फल है कि जल्दी मृत्यु हो गई, या बुरे कर्मों का फल है? क्योंकि जल्दी जीवन समाप्त होना तो लगता है कि अच्छे कर्मों का फल है। कितना बढ़िया प्रश्न है ये तो प्रश्न में से प्रश्न निकाल लिया उन्होंने। तो ऐसे अनेक प्रश्न, कोई एक और कोई बिल्कुल हृदय में उभरता हुआ प्रश्न किसी का है? हाँ माता जी, शाश्वत क्या है और अशाश्वत क्या है? अरे वाह, आप तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है परमात्मा प्रेरित, या पहले से शायद ये देख के आए हैं, प्रश्न रेडी रखा है आप लोगों ने, सारे के सारे उत्तर इसी में हैं आज ना? अभी देखते हैं समय कैसे ले चलता है। मैं समझा नहीं, क्या बोले आप? ऐसा बताया जाता है, आपको किसने बताया ऐसा? हाँ, तो अभी हम आ गए आत्म साक्षात्कार के इस विज्ञान में, जिसमें हर चीज गीता और भागवत और अनेक शास्त्रों पे हम आधारित चर्चा करेंगे। आज तक बहुत कुछ सुने हैं, ये सुने हैं, वो सुने हैं, इसने ये बोला, उसने ये बोला, हमारे अंकल ने ये बोला, हमारी आंटी ने ये बोला, हमारे माता ने ये बोला, पिता ने ये बोला, टीचर ने ये बोला, दादा ने ये बोला, दादी जी ने ये बोला, नानी जी ने ये बोला, उसने ये बोला, फलाने ये बोला। अरे जब कोई बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल के प्रॉपर टीचर से सीखता है, ऐसे नहीं बोलते गली मोहल्ले में ये बोला, उस गली मोहल्ले में ये बोला। लेकिन अध्यात्म के बारे में या कर्मों के बारे में या गुरु के बारे में हजार प्रकार के विचार प्रचलित है। उसमें से पहला एक प्रश्न हमारे जीवन में, ये तो हम कर चुके हैं पहले। हाँ, पहला प्रश्न आता है, क्या भाग्य पूर्व निर्धारित है? हाँ, ये प्रश्न आता है। यहां पे देखेंगे आप, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? हमारा भाग्य कौन निश्चित करता है? क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? ये सबके हृदय में बहुत ही बड़ा प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं आपके इच्छा के विरुद्ध होती हैं। हर दिन ऐसी चीज होती है, हर पल कभी कभी ऐसी चीज होती है जो चाहिए उसके विरुद्ध होता है। जो भी आता है मन परेशान रहता है, अरे ये नहीं आया, सर्दी आए तो गर्मी नहीं आई, गर्मी आए तो सर्दी नहीं आई, बारिश नहीं हुई तो बारिश क्यों नहीं हुई, बहुत बारिश हो जाए तो बारिश क्यों हो गई। तो हर समय किसी ना किसी कारण से दुख। तो क्या ये सब पूर्व निर्धारित है? तो यहां पे एक बहुत बड़े प्लेयर हुए, कौन है ये जानते हैं आप इनको? कुछ लोग जानते रहेंगे, पता नहीं टेनिस का विज्ञान, मेरे को तो टेनिस का ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन टेनिस के प्लेयर हैं आर्थर एश। ये बहुत बड़े प्लेयर रह चुके, पूरे विश्व के स्तर पे इन्होंने मेडल जीते, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार या चार बार। और इतना जीतने के बाद उनको एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर या कुछ तो बीमारी हो गई। और जब बीमारी हो गई और इतना बुरा हालत हो गया शरीर का, तो उनके हजारों लाखों उनके फैन थे पूरे जगत में जो उनसे प्रेम करते थे, तो उनको बहुत चिट्ठियां भेजने लगे, कुछ शब्द लिख के अपनी सहानुभूति प्रकट करते हुए। तो उसमें से लाखों लाखों पत्र में से एक बच्चे ने एक पत्र लिखा और उसमें प्रश्न पूछा, अरे आप तो इतने बड़े प्लेयर थे, इतना बड़ा काम कर रहे थे, इतना प्रसिद्धि हासिल कर रहे थे, आपके जीवन में ऐसा क्यों हुआ? तो वो किसी पत्र को पढ़ते नहीं थे, क्योंकि इतना पत्र आ रहा है और व्यक्ति बीमार पड़ा है, लेकिन गलती से उन्होंने ये पत्र उठा लिया और खोल के देखा। तो उन्होंने उस पत्र का जवाब दिया कि देखो, इस पृथ्वी पे अगर देखेंगे कितने लोग टेनिस देखते हैं, उन्होंने कुछ बोला, शायद 50 करोड़ टेनिस देखते होंगे, उसमें से कुछ 5 लाख लोग शायद टेनिस खेलने की इच्छा रखते होंगे, उसमें से 50,000 लोग शायद प्रोफेशनल टेनिस का ट्रेनिंग लेते होंगे। बोले उसमें से कुछ 50 लोग इस जो वर्ल्ड कप जो फाइनल मैच हो रहा है उसमें आते होंगे, उसमें से भी 4 लोग सेमीफाइनल में आते होंगे, उसमें से 2 लोग फाइनल मैच में आते होंगे। बोले 50 करोड़ से शुरू किया, लाख करते हुए, हजारों करते हुए, कुछ 2 लोग, उन 2 में से मैं अकेला एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार या 4 बार में पूरे विश्व का जो मेडल है, कप है, वो जीता। तब तो तुमने मुझे चिट्ठी नहीं भेजा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और आज जब मुझे कैंसर हो गया तो बोलते हो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा बहुत बार होता है कि जीवन में बहुत कुछ अच्छा होता है, तब कोई प्रश्न नहीं पूछता, अरे भगवान इतना अच्छा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। लेकिन जब बहुत दुख आने लगते हैं तो व्यक्ति पूछता है, अरे ऐसा क्यों हो रहा है, इतने दुख क्यों आ रहे हैं। कोई पीछे से प्रश्न आया या बीच में भी किसी ने प्रश्न पूछा कि जो लोग भक्ति करते हैं या बहुत पुण्यवान कर्म करते हैं, उनके जीवन में लगता है ज्यादा ही दुख आते हैं, और केवल आप ही नहीं, शास्त्र गवाह है इस चीज का, शास्त्र गवाह है। अरे महाभारत जिन लोगों ने पढ़ी होगी, एक तरफ 100 कौरव थे, एक तरफ 5 पांडव थे, और वो पांडव भी ऐसा नहीं कि घर पे कृष्ण की मूर्ति रख के अगरबत्ती घुमा रहे थे, अरे कृष्ण तो उनके साथ रहते थे, हर समय आते जाते मिलते रहते थे, कभी भी आया मिलने के लिए आ गए, भोजन करने के लिए आ गए, साथ भोजन करते थे। अर्जुन और कृष्ण काफी बार साथ में खेले बचपन में, हाँ साथ में सोए, काफी कुछ साथ में किया। सोचिए, भगवान आपके घर में रहते हैं मूर्ति के रूप नहीं, स्वयं चलते फिरते भगवान, खेलते हैं साथ में आपके साथ, डाइनिंग टेबल पर बैठ के भोजन खाते हैं, आप घूमने जाते हैं तो साथ में घूमने के लिए आते हैं, ट्रेन में आपके साथ सफर करते हैं। सोचिए, अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो और फिर उसके जीवन में पांडवों को क्या मिला, बचपन से जब तक कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं हुआ, दुख ही दुख। एक भी क्षण ऐसा नहीं था जब उनको लगे चलो अभी तो शांति हो गई। एक सुख खत्म हुआ तो दूसरा, एक दुख खत्म हुआ दूसरा आ गया। अच्छा पांडव तो छोड़ दो, भगवान का सबसे उत्तम, सबसे उच्च धाम कौन सा है? भगवान कृष्ण का धाम कौन सा है? वृंदावन। भगवान कृष्ण बाल्य अवस्था में जिस दिन वृंदावन में कदम रखे, उस दिन से वृंदावन पे विपत्तियां आनी शुरू हो गई। तो आप तैयार हो जाओ विपत्तियों के लिए। ऐसा नहीं है, घबराने की बात नहीं है, लेकिन अगर विचार करेंगे, सोचेंगे तो अरे ये कैसा है, व्रजवासी जो वृंदावन में सबसे निकटी, सबसे उत्तम भक्त माने जाते हैं, सबसे उत्तम श्रेणी के, भगवान कृष्ण के आते ही एक पूतना राक्षसी आ गई, और ऐसी खतरनाक राक्षसी, ऐसी खौफनाक कि छोटे छोटे जितने नवजात शिशु थे हर गांव में सबको मार डाला, सबको खा गई, ऐसी राक्षसी। तो इसे क्या बोलेंगे, हैप्पी बर्थडे? इसे बोलेंगे हैप्पी जन्माष्टमी? ये कैसी जन्माष्टमी हुई भाई, जिसके आते ही, कभी किसी का जन्म लेते ही कोई मर जाता है ना तो बोलते हैं बड़ा अपशगुन, कितना बुरा है इस बच्चे का आना, कभी कभी लोग ऐसे सोचते हैं। अरे कृष्ण के आते ही तो सारे के सारे नवजात शिशु मर गए, और क्या चाहिए। तो कोई भी प्रश्न पूछेगा आखिर क्यों होता है ऐसा, ठीक है आप बोले दुखालेत, लेकिन मन में प्रश्न आता है आखिर क्यों, मेरे साथ ही क्यों। एक व्यक्ति है, क्रिश्चियन प्रीस्ट है, क्रिश्चियन पुजारी, क्रिश्चियन प्रीस्ट, उसका नाम मैं भूल गया, लेकिन उसने एक किताब लिखा है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। भगवान की अभी प्रीस्ट हुआ तो मतलब, क्रिश्चियन प्रीस्ट हुआ तो भगवान का बड़ा भक्ति करता था, भगवान का नाम जप करता था, अपने तरीके से पूजा करता था। एक दिन वो गली में अपने छोटे बच्चे को, नवजात शिशु को, वो होता ना क्या बोलते हैं उसको आप, साइकिल बोल रहे, जो भी उसमें बिठा के घुमाते हैं, वॉकर बोल रहे, उसमें उठा घुमाते हैं, अभी घुमा रहा था, उधर से कुछ तो बड़ा दंगा सा हो गया, बहुत सारे बदमाश गुंडे लोग उधर, कुछ तो दंगा हो गया, और उसमें वो बच्चा उसी क्षण, अभी नवजात छोटा सा बच्चा था, उसकी मृत्यु हो गई। अभी सोचिए, नवजात शिशु, माताजी ने बोला कि नवजात शिशु ने ऐसा क्या कर्म किया है, और उसके ऊपर उसके पिता ने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया है। अरे वो तो भगवान का पुजारी, हर समय भगवान की ही सेवा करता था, उस दिन से उसका पूरा जीवन का तत्व बदल गया। बोला भगवान या तो सर्वशक्तिशाली हो सकते हैं, या सर्वज्ञ हो सकते हैं, या पूर्ण रूप से दयालु हो सकते हैं, तीनों नहीं हो सकते। अगर वो शक्तिशाली हैं, अगर उनके पास हर चीज पे कंट्रोल है, अगर वो पूरे कर्म को संभाल सकते हैं, लोगों के कर्मों को, भाग्य को, तो जरूर उनके पास दया नहीं होगी, और अगर उनके पास दया है तो शक्ति नहीं होगी, और अगर दया है शक्ति है तो शायद उनको ज्ञात नहीं है कि कहां पे क्या हो रहा है, सर्वज्ञ नहीं है। अगर किसी के घर में कुछ बुरा हो जाए तो शायद भगवान को मालूम नहीं कि मेरे घर में क्या हो रहा है, शायद किसी ने उनको बताया नहीं। कभी कभी आपका कोई रिश्तेदार दूर होता है और किसी समय उसकी सहायता की आवश्यकता होती है, वो नहीं आ पाता, तो हम सोचते हैं कि उसको किसी ने बताया है कि नहीं बताया। कभी कभी कोई अस्पताल में भर्ती होता है या किसी की मृत्यु हो जाती है और आपके सबसे नजदीकी रिश्तेदार नहीं आते, तो लोग सोचते हैं अरे उसको मालूम है कि नहीं मालूम। और अगर मालूम है और उसके पास आने का फैसिलिटी भी था, फिर भी नहीं आया, कितना कठोर दिल का व्यक्ति है। अगर कठोर नहीं है, मालूम है बहुत नम्र है, उसको ज्ञात भी है, फिर भी नहीं आया, तो प्रश्न पूछते हैं शायद आने में कुछ दिक्कत तो नहीं थी, क्योंकि तीनों चीजें साथ में होना और फिर भी मौजूद ना होना, ऐसे कैसे हो सकता है। तो प्रश्न आता है आखिर क्यों। ठीक है माना दुखालय है, लेकिन भगवान तो कृपालु है, दयावान है, उनका हृदय तो नम्र है, एक पिता के समान है, पिता तो कठोर नहीं हो सकते। आखिर क्यों, ये प्रश्न बार बार आता है। और शायद अगर आप जो लोग अभी भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, भक्ति अगर शुरू कर भी दें अच्छे से, फिर भी शायद जीवन में कब क्या हो मालूम नहीं। हमारे उधर जहां पे मैं रहता हूं चौपाटी में, हमारा जो इस्कॉन का मंदिर है, एक मंदिर इधर है, एक जुहू में है चौपाटी में, वो मंदिर में एक भक्त आते थे और इतना भक्ति में इतना उत्साहित हो गए कि रोज मंगल आरती को सुबह 5 बजे आने लगे। मंगल आरती साथ में सबके जप करते थे 16 माला बैठ के, और भागवत कथा सुनने लगे, और इतना रुचि हो गया उनको, इतना रुचि हो गया, भक्तों से इतना लगाव हो गया, कीर्तन में नाचने लगे। लेकिन कुछ ही महीनों में या कुछ साल में उनके जीवन में बहुत कुछ गड़बड़ होने लगा, उनके बच्चों के जीवन में बहुत समस्या आने लगी, किसी की नौकरी चली गई, कोई कॉलेज में फेल हो गया, किसी के विवाह में तकलीफ हो गई। अभी मैं ये नहीं बोलूंगा जो भक्ति में आएगा उसके ऐसा होगा, लेकिन एक व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ, और क्योंकि भक्ति में आने के बाद ऐसा हुआ, उसको लगा ये कृष्ण ही कारण है इसके। अरे भक्ति में आने के बाद तो जीवन यहां से यहां जाना चाहिए, अरे इनका जीवन तो यहां से नीचे चला गया, ये कैसे। वो इतना भ्रमित हो गए, इतना परेशान हो गए, भक्तों से आके अजीब अजीब प्रश्न करने लगे, और एक दिन इतना गुस्सा हो गए कि मंदिर के सामने गेट पे चिल्लाते हुए गुस्से में बाहर चले गए, बोले आज के बाद ये भगवान की चेहरा नहीं देखूंगा, दर्शन को नहीं आऊंगा। क्योंकि हर कोई शरण, हर कोई तलाश कर रहा है कि कहां पे मुझे शरण मिले। इस जगत में हर कोई जला हुआ है, दुख से परेशान है, हा? बोलते हैं संसार दावा नल, संसार दावा नल के समान है, अग्नि के समान है, तो उसमें किसी को ठंडक चाहिए। तो मंदिर में ठंडक के लिए आया था, लेकिन मंदिर में आने के बाद लग रहा है उसकी अग्नि बढ़ गई, ये कैसे हो गया, आखिर क्यों। आप में से कोई सिविल इंजीनियर है यहां पे, कोई इंजीनियर है, किसी का बेटा सिविल इंजीनियर है, किसी का भाई सिविल इंजीनियर है, कोई कोई रिश्तेदार, कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। चलो अगर आपका कोई रिश्तेदार, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है उसको, ये उत्तरदायित्व दिया जाता है कि चलो आप बॉम्बे से 100 किलोमीटर दूर, मीरा रोड से 100 किलोमीटर दूर एक गांव है, उसको आप एक बढ़िया शहर में बदल दो, एक बढ़िया शहर में बदल दो आपका रिश्तेदार, और वो रिश्तेदार आपसे पूछने आता है कि आप कुछ आइडिया दीजिए कि मैं वो शहर को अच्छा कैसे बनाऊं, क्या क्या बनाऊं मैं उस शहर में, तो आप क्या बोलेंगे, अपनी इच्छाएं प्रकट कीजिए, बताएंगे आप। आपसे कोई शहर बनाने का, एक बड़ा शहर एस्टेब्लिश करने का, स्थापना करनी है उसकी, तो वहां पे क्या क्या होना चाहिए एक सुंदर शहर दिखने के लिए, स्कूल होने चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, आप वो सब चीजें बताइए जो आपको बॉम्बे में नहीं मिलती, और जो कुछ भी बॉम्बे में मिलती हैं सब कुछ बता दीजिए। चलो सड़कें होनी चाहिए, गार्डन होने चाहिए, हर कम्युनिटी में गार्डन अच्छा होना चाहिए, है कि नहीं, हाँ, बैंक होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए, रुकिए रुकिए, बारी बारी, मंदिर, बैंक, और क्या बोले, सड़कें, और क्या बोले, अस्पताल होना चाहिए, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, आजकल तो शॉपिंग मॉल्स आते हैं, कोई छोटा मोटा मार्केट तो आता नहीं है, खोलते हैं तो ऐसा मार्केट खोलते हैं कि आप वहां पे एक चीज खरीदने जाओ 10 चीज खरीद के आ जाएंगे आप, हाँ। एयरपोर्ट होना चाहिए, अरे वाह, हाँ, शहर बनाओ तो शुरू से ही एयरपोर्ट, ऐसा नहीं कि 10 साल बाद एयरपोर्ट आ रहा है वहां पे, हाँ। रेलवे होना चाहिए, और क्या, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का बंदोबस्त अच्छा होना चाहिए, हाँ सही बात है, अभी तो गांव है, कभी बिजली आती है कभी नहीं आती है, हाँ। अभी भी आप दिल्ली में जाएंगे तो वहां बिजली, गर्मी के मौसम में आधे टाइम तो बिजली होती नहीं है, बॉम्बे में ये बड़ा सुख मिलता है, हर समय बिजली है, और क्या, पानी, हाँ, कितने जगह पे पानी नहीं है, सुबह सुबह पानी भरा नहीं तो मतलब दिन भर पानी नहीं, तो पानी फर्स्ट क्लास होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा हो कि जैसे नदी में स्नान कर रहे हैं, खुला पानी। और क्या? हाँ, ठीक, क्या होना चाहिए? जिला अधिकारी, ठीक है, जिला अधिकारी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? सोचिए, कुछ एक चीज मिस कर रहे हैं आप, जो हमें चाहिए अभी। वेल प्लान्ड हाउसेस होने चाहिए, घर बढ़िया होना चाहिए, फर्स्ट क्लास, शुरू से सब कुछ प्लानिंग हुआ हो। और जिसको प्लानिंग करना है, माता जी के पास चले जाना, बताएंगी कैसे प्लानिंग करना है। और क्या? पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्टर अच्छा होना चाहिए। और क्या? एजुकेशन बढ़िया होना चाहिए। अरे सब कुछ बोल दिए, जल्दी बोलिए, एक चीज आप नहीं बोले अभी तक, सुख होना चाहिए। हाँ, तो अभी आप थोड़ा नजदीक आ रहे हैं। अगर सुख होना चाहिए तो सुख बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? दुख होना चाहिए। सुख बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए क्या होना चाहिए? भगवान को भूल जाओ अभी आप थोड़ी देर के लिए, मंदिर को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, भगवान को भूल जाओ। बोलिए, सुख शांति बनाए रखने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट विभाग सिटी में होना चाहिए, पुलिस स्टेशन। हा? और पुलिस स्टेशन में क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर, प्रिजन हाउस, जेल होती है, वो भी बहुत जरूरी है, कोर्ट होता है जहां जजमेंट दिया जाता है, बहुत जरूरी है सुख और शांति बनाए रखने के लिए। क्योंकि अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि वो कोर्ट या पुलिस या लॉ एंड ऑर्डर क्यों जरूरी है? कौन बोला, कौन बोला, हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, सभी लोग एक समान नहीं हो सकते, कुछ लोग जरूर होंगे जो नियम तोड़ेंगे। हाँ, तो कुछ लोग जरूर होंगे जो नियम तोड़ेंगे, और उनको कंट्रोल करने के लिए एक पुलिस डिपार्टमेंट चाहिए, एक कोर्ट चाहिए जजमेंट के लिए, एक कारागार चाहिए, प्रिजन हाउस चाहिए। हा? प्रिजन हाउस में क्या करते हैं कैदी को? प्रिजन हाउस में कैदी को क्या करते हैं? सजा देते हैं। और क्या? प्रिजन हाउस का जब आपके दिमाग में पिक्चर आता है तो क्या क्या चीज ध्यान में आती है आपके? हाँ, पत्थर तोड़ते हुए, माता जी बोल रही हैं, पत्थर तोड़ते हुए व्यक्ति दिखता है, तो जैसी वो गुनाह है वैसा सजा। और क्या याद आता है आपको कारागार में? पुलिस की मार, वो भी सजा हो गई। और क्या? हाँ, तो सजा और क्या, जब सजा मिलेगी तो कैदी को क्या मिलेगा? दुख मिलेगा, दुख और सजा, दो चीज। चलो, दुख और सजा, और क्या कारागार में आपको याद आता है? तो वो भी दुख है। और क्या? दुख, सजा, तीसरी चीज बंदिश। किसकी बंदिश? हाँ, एक कमरे में बांधा है, हो सकता है तो चेन से बांध के रखा है। तो दुख, सजा, तीसरी चीज बंदिश, और चौथी चीज क्या आपके दिमाग में आती है जेल को देख के? माता जी बोली वो क्या सजा देगा, पुलिस मारेगा, तो पुलिस, पुलिस इंस्पेक्टर भी तो ध्यान में आता है, वो भी तो होना चाहिए वहां पे मारने के लिए, तो पुलिस इंस्पेक्टर। और क्या? चार चीज हो गई, एक चीज और बोलिए तो हमारा पूरा हो जाएगा। हाँ, वो तो हो गया, बंधन, मजबूत दीवार, मजबूत चेन, पश्चाताप की भावना, वो तो मार मार के आई जाएगी। इसीलिए तो आप सब यहां बैठे हैं। और क्या? एक चीज और, जो आप कैदी को ध्यान में लाते हैं तो क्या ध्यान में आता है? अगर आपको ड्रामा करना है और कैदी को सामने रखना है तो क्या ध्यान रखेंगे आप? ड्रेस। कौन बोला? ड्रेस, वस्त्र, कैदी के वस्त्र भी तो होने चाहिए। तो अगर आपको सेटअप करना है तो उसमें कारागार होना चाहिए, कारागार में ड्रेस इंपॉर्टेंट है, बंधन इंपॉर्टेंट है, दुख होना चाहिए, सजा होनी चाहिए और सजा देने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए। तो जब बात करते हैं आखिर क्यों ऐसा दुखालय क्यों बनाया भगवान ने, जहां पे लगता है हर समय जो सजा मुझे नहीं चाहिए वो मिलती है, जिसको मैं डिजर्व नहीं करता वो मिलती है, जो सजा मुझे नहीं मिलनी चाहिए वो मिलती है, ऐसा लगता है हमको, हर कैदी को यही लगता है। दुखालय क्यों बनाया? शहर की सुविधाएं, इमारतें हैं, सिनेमा है, अस्पताल है, विद्यालय है, क्रीड़ांगन है, शॉपिंग सेंटर, मैदान, रास्ते, सेतु, आपने सब बोले। एक कारागार भी होना चाहिए, कारागार होगा तो दर्द और सजा भी होगी, दर्द और सजा के साथ। वो दर्द किस प्रकार की? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये दर्द है, एक जीव बार बार उसको भुगत रहा है। इस पे मैं एक और पॉइंट बोलना चाहूंगा। उस दिन एक व्यक्ति मेरे पास आए थे और बोले थे कि आजकल काफी कोर्स ऐसे होते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर, अपने विचार ही पॉजिटिव रखोगे तो सब पॉजिटिव चलेगा। अरे आप, अगर आप मन में सोचोगे सब जगह दुख है तो दुखी नजर आएगा, अगर आप मन में सोचोगे सब जगह अच्छा है तो अच्छा ही नजर आएगा। तो ऐसे भी कोर्स होते हैं, वो बोलते हैं आपने मन को ट्रेनिंग दो कि सब जगह सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, तो सब कुछ बढ़िया ही होगा, क्योंकि आपका मन सोचता है सब जगह दुख है तो दुखी दिखते हैं आपको। लेकिन अगर मन सोचेगा सब जगह अच्छा है तो सब कुछ अच्छा ही दिखेगा। तो वो भक्त बोल रहे थे, जो अभी तो पता नहीं आए कि नहीं आया, आज परसों आए थे, और बोल रहे थे कि अगर आपका मन को आप ऐसा ट्रेनिंग, ऐसा प्रशिक्षण देंगे मन को कि सब बढ़िया है, सब दुख होने के बावजूद भी नहीं नहीं सब बढ़िया है, तो वो भी अच्छी टेक्निक है, अच्छी बात है। पॉजिटिव थिंकिंग करना बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव विचार रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, आप दुख का सामना पॉजिटिव विचार से कर सकते हैं। अगर किसी को घुटने में दर्द है तो बोलेगा ठीक है पीठ में तो दर्द नहीं है, किसी की एक आंख खराब है तो बोलेगा ठीक है दोनों तो खराब नहीं है, वो पॉजिटिव थिंकिंग हो गई। किसी की दोनों खराब है तो बोलेगा ठीक है सोचने की शक्ति तो है, कोई गूंगा है तो बोलेगा ठीक है सुन तो सकता हूं, कोई सुन नहीं सकता और गूंगा भी है ठीक है लिख तो सकता हूं, किसके हाथ नहीं है तो बोलेगा ठीक है टांगे तो हैं, किसी के हाथ और टांगे नहीं है तो बोलेगा ठीक है हवा तो है सांस लेने के लिए, फेफड़े तो काम कर रहे हैं, दिल तो काम कर रहा है। तो तरीका है देखने का, बुरा मत देखो केवल अच्छा देखो, भगवान ने बहुत कुछ दिया है अच्छा उसके बारे में विचार करो। हा? सुदामा ब्राह्मण, सबने नाम सुना रहेगा कृष्ण लीला में, सुदामा बड़ी फेमस, बड़े प्रसिद्ध भक्त हैं। हाँ, आजकल वो एक, कुछ साल पहले वो एक गाना भी निकला था, हाँ, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, हाँ आप लोग सुने हैं ये, हाँ दर पे सुदामा, सुदामा गरीब आ गए हैं ऐसा। हाँ, तो देखिए सुदामा भगवान कृष्ण के साथ एक ही गुरुकुल में रहे, साथ में खेले, साथ में खाए, लेकिन कई साल उनके गरीबी में निकल गए। लेकिन सुदामा के दिल में एक भी गरीब, मतलब ऐसी गरीबी थी खाना खाने को नहीं था, उनके मन में एक बार भी विचार नहीं आया कि अरे भगवान का मित्र हूं और कुछ भी खाने को भी नहीं है मेरे पास। जो भक्त होता है वो रियल पॉजिटिव थिंकर होता है। अरे सुदामा सोचे कुछ साल गुरुकुल में कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दोस्ती मिली और जीवन में क्या चाहिए। भक्त की चेतना तो अलग ही स्तर पे रहती है, वो सोचता है अरे इतना मिल गया और चाहिए क्या। एक भक्त थे चैतन्य लीला में, मुकुंद नाम है उनका, उनको बोला गया उनकी इच्छा होगी मुझे भगवान के दर्शन कभी होंगे, तो भगवान ने बोला उनको 10,000 वर्ष रुकना पड़ेगा मेरे दर्शन करने के लिए। तो अभी सोचिए अगर कोई आपको बोले, अभी वो भक्त बोल रहे थे, कोई तो अभी बोला कि अगर एक बच्चे की एक साल में मृत्यु हो रही है तो अच्छा ही है ना, मुक्ति मिल रही है उसको, तो किसी को बोलेगा अभी एक साल में दर्शन होंगे भगवान के तो अच्छा है ना। आपको बोला जाए अभी आपको 10,000 जन्मों तक रुकना पड़ेगा भगवान के दर्शन होने के लिए, कैसा लगेगा आपको बताइए? कितने लोग खुश होंगे इस बात पे? दिल से बोलना प्रभु जी, कैसा लगेगा आपको? आपसे पूछ रहा हूं, नहीं इनसे पूछ रहा हूं, आगे बैठे ना। हाँ, कैसा लगेगा आपको? 10,000 साल लगेंगे। तो एक तरीका है देखने का, वो बोलेगा 10,000 साल या 10,000 जन्म, वो आदमी अभी से ही डिप्रेशन में चले जाएगा। लेकिन एक तरीका देखने का है, अरे मैं इतना तुच्छ हूं मालूम नहीं, यहां तो लोग 84 लाख योनियां कवर कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं 84 लाख योनि की जगह 10,000 में ही मिल जाएगा दर्शन, वो तो नाचने लगेगा। तो जो अध्यात्म को समझता है वो तो हर क्षण उत्सव मनाता है, क्योंकि जो भगवान ने दिया उसको देखता है। तो जो अध्यात्म है, ये जो ज्ञान है गीता का, ये हमको नेगेटिव थिंकर नहीं बना रहा, लेकिन साथ ही साथ हमको रियलिटी दिखा रहा है, सत्य दिखा रहा है। और सत्य क्या है कि हम लोग सजा भुगत रहे हैं, हम लोग दर्द भुगत रहे हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, तीन प्रकार की सजा हमेशा हमारे सर पर लादी जा रही है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। ठीक है हम नेगेटिव थिंकर नहीं है, हम नेगेटिव विचार नहीं रखते, लेकिन सत्य यह है कि चाहते हुए ना चाहते हुए ये तीन चीज हमारे सर पे डाली जा रही हैं। तो हमें इसका उपाय चाहिए। दर्द हो गई, सजा हो गई, ये सजा कौन दे रहा है? बात हुई पुलिस इंस्पेक्टर कौन है, कौन सजा दे रहा है? तो जैसे कल हमने बात किया, भगवान कृष्ण एक CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और उन्होंने बहुत लोग लगाए रखे हैं। एक विदेशी व्यक्ति हमारे भारत में आए पहली बार, और भारत में आते ही सोचने लगे अरे ये कैसा देश है, 33 करोड़ भगवान है इनके, 33 करोड़ देवता। तो वो अनेक मंदिरों में गए, तो हर मंदिर में गए, शिवजी के मंदिर में गए, देखा शिवजी की अगर मूर्ति देखेंगे तो कैसे बैठे हैं शिवजी। किसी ने शिवजी की खड़ी हुई मूर्ति देखी है? होती है। किसी ने शिवजी की सोई हुई मूर्ति देखी है? आम तौर पे शिवजी की मूर्ति किस रूप में मिलती है आपको? समाधि में। अगर कोई व्यक्ति समाधि में बैठा है तो किसी पे तो ध्यान लगा रहा होगा। जो व्यक्ति खुद पूर्ण पुरुषोत्तम है वो तो किसी पे ध्यान नहीं लगाता। तो वो बोले अरे ये तो ध्यान लगा रहे हैं। फिर वो गए दुर्गा के मंदिर में, तो दुर्गा का जो मूर्ति देखते हैं कैसे देखते हैं आप? दुर्गा जी का शेर के ऊपर सवार है, हाथों में क्या है? अस्त्र हैं, त्रिशूल हैं, बहुत सारे अस्त्र हैं, अनेक प्रकार के अस्त्र हैं। तो बोले अरे ये तो भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान, जो आदमी भगवान है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है, वो थोड़ी ना हर समय भाग रहा है ये कंट्रोल करना है, ये कंट्रोल करना है, ये कंट्रोल करना है। शांत होना चाहिए। भगवान मतलब आनंद में है, अपने धाम में आनंद ले रहे हैं। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी का मंदिर देखो, पुष्कर में गए हैं आप? कोई ब्रह्मा जी के मंदिर में गया है? गए हैं। तो ब्रह्मा जी के एक नहीं चार मुख हैं, चतुर्मुख, और चारों मुख आंखें बंद करके ध्यान लगा के बैठे हैं, वो भी ध्यान लगा रहे हैं। तो बोले जिस भी मंदिर में जाओ कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम कर रहा है। गणेश जी भी पूरे शास्त्र लिख रहे हैं, लिखने में व्यस्त हैं, व्यासदेव के लिए काम कर रहे हैं, या फिर लोगों के विघ्न दूर कर रहे हैं, कितना बड़ा काम है, सब लोग आके बोल रहे हैं। यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधिराज विघ्नम विहंतु मलमस्य जगत्त्रयस्य। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, गणेश जी की प्रार्थना कर रहे हैं कि गणेश जी कैसे विघ्न दूर करने की शक्ति कहां से लेते हैं? भगवान गोविंद से, श्री कृष्ण से, वो भी कुछ काम कर रहे हैं। तो ये विदेश से आए हुए व्यक्ति बोले अरे भगवान तो वो होना चाहिए जो कुछ काम नहीं कर रहा, केवल आनंद में लीन है। तो कृष्ण के मंदिर में गए, राम के मंदिर में भी जाए तो वो भी तीर कमान लेके खड़े हैं, युद्ध करने को तैयार हैं। तो कृष्ण के अवतार ही लेकिन इस रूप में आए हैं। कृष्ण के मंदिर में गए तो वो तो वेणुम क्वनंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतम समसिताम्बु दसुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि आलोल चंद्रकल सद्वन माल्यवंशी रत्नांगदम प्रणय केली कला विलासम। प्रणय केली कला विलासम, अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं भक्तों के साथ। वेणुम कोनंतम, अपनी वेणु को बजा रहे हैं आनंद में। अगर कोई म्यूजिक बजा रहा है मतलब आनंद में है। कोई तो अभी ये प्रभु जी बोले, सुख का नाम आता है तो साथ में म्यूजिक का नाम साथ में आ जाता है कि नहीं? जब सुख का नाम आता है, आनंद का नाम आता है, तो म्यूजिक तो होना ही चाहिए, नाच गाना तो होना ही चाहिए। अरे भगवान के धाम में श्रीय कांत कांत परम पुरुष कल्प तर्व द्रुमा भूमिश्चिंतामणि गणमयी तोयम अमृतम कथा गानम नाट्यम गमनम अपि वंशी प्रिय सखी। अरे भगवान का धाम ऐसा है, कथा गानम नाट्यम, वहां लोग बोलते नहीं है, गाते हैं। अभी सोचिए आप प्रश्न पूछेंगे मुझसे, गा के पूछेंगे। अगर मैं यहां पे प्रवचन दूं तो गा के सुनाऊंगा, तो मतलब इंसान कितना खुश है। कभी आपने देखा, कभी खुशी होती है तो गाने का मन करता है, जब आदमी खुश होता है तो कुछ तो गुनगुनाने लगता है, अपना फेवरेट सॉन्ग गुनगुनाएगा, दुख का सॉन्ग नहीं खुशी का सॉन्ग गुनगुनाएगा। जब खुशी होगी मन में, खाना खा रहा है, खाना पका रहा है, स्नान कर रहा है, गाने लगेगा। कभी आपने किसी दुखी व्यक्ति को स्नान करते हुए गाते हुए नहीं देखेंगे, लेकिन कोई अगर आनंद में है तो ऑटोमेटिक स्वाभाविकता म्यूजिक निकलेगा। वो बोल रहे हैं भगवान का धाम तो ऐसा है कि म्यूजिक पल पल पे म्यूजिक निकल रहा है, और लोग चलते नहीं है वहां पे। कथा गानम नाट्यम गमनम अपि, नाट्यम चलते नहीं है, नाचते हैं। आप सोचिए आप कितने लोग हैं यहां, 50-60 लोग आएंगे, हर व्यक्ति नाचता हुआ अंदर आए कैसा लगेगा? आप सोचिए हर व्यक्ति, अरे अंदर तो छोड़ो, हॉस्पिटल में घुस रहे हैं नाचते हुए, लिफ्ट में घुस रहे हैं नाचते हुए, लिफ्ट मैन आपका वेलकम कर रहे हैं नाचते हुए। बोलेगा ये कैसा अजूबा ही देश है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नाच रहा है, पेशेंट नाच रहा है कि नहीं? ऑपरेशन पे सर्जरी हो रही है, आसपास डॉक्टर नाच रहे हैं। सोचिए सर्जरी हो रही है, डॉक्टर एनेस्थीसिया डॉक्टर नर्स सब नाच रहे हैं आपस में। पेशेंट की किडनी निकाली, किडनी से नाचने लगे, चलो गेम खेलते हैं। हमारे कॉलेज में जब नए नए स्टूडेंट लोग पढ़ने के लिए आए, तो मृत शरीर का जब डिसेक्शन करते हैं तो वो बच्चे खेलते हैं उससे, किडनी निकाला चलो बैट बॉल खेलते हैं उससे, एक किडनी दिया उसको, एक किडनी पकड़ा कैच किया उसको, तो खेलते हैं। लेकिन ऑपरेशन थिएटर में कोई ऐसा नहीं करेगा, वो तो मृत शरीर है, एक पकड़ता लिवर एक पकड़ता किडनी, किडनी को बनाया बॉल, लिवर को बनाया बैट, चलो क्रिकेट खेलते हैं, मृत शरीर है। लेकिन सोचिए ऐसी जगह जहां पे हर कोई नाच रहा है, वो भगवान का धाम है। और वही भगवान ने ये सृष्टि में एक कारागार बनाया है, और वहां पे एक पुलिस सुपरिंटेंडेंट को रखा है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेक छाये वयस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम पियस्य चचेष्टटेसा। दुर्गा को, दुर्गा देवी को रखा है, किस लिए? सजा देने के लिए, सजा देने के लिए। भगवान का धाम इस जगह से अलग है। कहते हैं अगर पूरी सृष्टि को विभाजित कर दिया जाए तो 3/4 जो सृष्टि है वो भगवान का धाम है, और 1/4 सृष्टि जो है वो ये भौतिक जगत है जहां पे हम लोग निवास कर रहे हैं। भगवान का धाम 3/4 सृष्टि है, ये शास्त्रों के अनुसार। मैं हर चीज आपको ब्रह्म संहिता या अनेक शास्त्रों के द्वारा बता रहा हूं। अगर वीडियो कॉन कंपनी, या आजकल कौन सी फेमस कंपनी है वॉशिंग मशीन की, कौन सी फेमस कंपनी, कौन सा वर्लपूल एलजी, वहां से आप वॉशिंग मशीन खरीदते हैं और वो एक मैनुअल देते हैं। वॉशिंग मशीन में क्या होता है, कपड़ा धुलता है, धुलता मतलब देखता है ना, घूमता है घूमता है घूमता है घूमता है। इसी प्रकार से यह सृष्टि भी है जहां पे जीव 84 लाख योनियों में घूमता है। जब वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुलते हुए देखो तो ध्यान रखना कि आपकी भी वही स्थिति है, हम भी घूम रहे हैं इस सृष्टि में, पूरा निचोड़ दिया है। ड्रायर भी होता है, निचोड़ देता है, ऐसे हर जीव को यह सृष्टि निचोड़ रही है। जल्दी निचोड़ती है तो जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। जिसके जीवन में रिलेटिवली सुख है, सब सही चल रहा है, तो धीरे धीरे बुढ़ापा आता है, लेकिन निचोड़ती है। एक अच्छा ड्रायर है, एक स्लो ड्रायर है, लेकिन ड्राई करता है, निचोड़ता है, खून पसीना बहाना पड़ता है यहां पे, तब जाके कुछ सुख मिलता है। दिन में 10-12 घंटा चर्च गेट टू विरार, विरार टू चर्च गेट करना पड़ता है, ट्रैफिक जैम में फंसना पड़ता है, अच्छे से निचोड़ते हैं फिर जाके कुछ सुख मिलता है, फिर जाके आहार निद्रा भय और मैथुन कर सकते हैं। निचोड़ती है यह मशीन हमको, उस वॉशिंग मशीन के साथ मैनुअल दिया है। ऐसे ही ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण किया तो वो सृष्टि के साथ ब्रह्म संहिता भी दी है, उसमें प्रार्थनाएं दी हैं और बताया गया है सृष्टि का तत्व क्या है, और उसमें बताया गया है कि 1/4 सृष्टि दुर्गा देवी संभाल रही हैं जो कि सजा के लायक हैं, और 3/4 सृष्टि मूल निवास भगवान का धाम जहां पे केवल प्रणय केली कला विलासम श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम, भगवान श्याम सुंदर नियत प्रकाशम अपने प्रकाश से अपनी शक्ति से केली विलासम विलास कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं भक्तों के साथ, और भक्त तो भगवान से ज्यादा आनंद ले रहे हैं, भक्त भगवान से ज्यादा आनंद ले रहे हैं। भगवान को अपना सेवक बना लिया, भगवान के साथ कुश्ती खेल रहे हैं और भगवान के कंधों पे बैठ जाते हैं, अपना झूठा भगवान को खिलाते हैं, भगवान का झूठा खाते हैं, मिलके खेल कर रहे हैं। क्या पुण्य किए रहेंगे इन लोगों ने, कौन पुण्यवान आत्माएं हैं जो भगवान के धाम में रह रही हैं। लेकिन उससे पहले तो यह प्रश्न आएगा, क्या प्रश्न आएगा, एक प्रश्न तो यह है कि कौन पुण्यवान आत्माएं हैं जो वहां पे इंजॉय कर रही हैं। अगर आप कहीं पे भी इंजॉयमेंट देखेंगे, इंजॉयमेंट बड़ा है। अभी बॉम्बे का सबसे पॉश एरिया कौन सा है, सबसे रिच एरिया, सबसे अमीर लोग जहां पे रहते हैं कौन सा एरिया है, कोलाबा, नरीमन पॉइंट, मालाबार हिल, हाँ, मरीन ड्राइव, कोई बड़ा बंगला है, हा? बड़ा बंगला है। तो इंसान सोचता है, अब जिसका घर छोटा सा है सोचता है कौन लोग रहते होंगे, क्या पुण्य किया है यहां पे घर मिला है, हा? हर व्यक्ति के पास अपनी गाड़ी है, एक नई चॉइस की गाड़ी, हर महीने नया गाड़ी खरीदते हैं, कौन पुण्यवान आत्माएं रहेंगी। लेकिन उससे पहले तो कौन पुण्यवान आत्मा है भगवान के मूल निवास में, निवास में साथ में रहती हैं, उससे पहले तो यह प्रश्न आएगा, क्या प्रश्न आएगा, क्या प्रश्न आएगा, अरे मैंने कौन से पूरे कर्म किए थे कि मेरे को यहां डाल दिया, मैंने कौन से कर्म किए थे कि मेरे को इस वॉशिंग मशीन में निचोड़ रहे हैं, मैं भी तो अच्छा हूं। हर कोई व्यक्ति सोचता है मैं तो अच्छा हूं, शायद मेरे बाजू वाला बुरा होगा, हाँ उसमें कुछ बुराइयां हैं, लेकिन मैं तो अच्छा हूं, ऐसे भी क्या इतना भी बुरा नहीं हूं कि निचोड़ रहे हैं मेरे को, वो तो भगवान के साथ बैठ के अच्छा विलास कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं, और हम लोग यहां पे सड़ रहे हैं इस जगत में, क्यों, आखिर क्यों, ऐसी कौन सी, ऐसा कौन सा गुनाह किया था, ये अगला प्रश्न आएगा। अपराध क्या किया मैंने, बोलो क्या अपराध किया, तो गीता में उत्तर दिया है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। 7वें अध्याय में 27वां श्लोक। पहली बात तो आपको यह बोलना चाहूंगा शुरू से ही, कितने लोगों के पास ये वाली भगवद गीता है, ये वाली एग्जैक्ट प्रभुपाद जी की, बढ़िया। हाँ हिंदी इंग्लिश मराठी, लेकिन ये वाली, हाँ तो ये होना बहुत जरूरी है। गीता तो बहुत लोगों के पास होती है, छोटी गीता होती है, केवल श्लोक दिए हैं, कितना समझता है। लोगों को गीता के श्लोक गाने का बहुत शौक है। मेरी नानी जी भी रोज गीता पढ़ा करती थी, हमारे घर में 5 गीताएं थी। इस विश्व में इस समय बोलते हैं 5 से 6 हजार गीताएं उपलब्ध हैं, लेकिन जैसे माता जी ने प्रश्न उठाया, वो गीता सिखाने के लिए सही गुरु भी चाहिए। ऐसी बहुत कम गीताएं हैं, ऐसी बहुत कम, ना के बराबर। तो प्रभुपाद जी ने इस गीता में बहुत बढ़िया से अनुवाद तात्पर्य से वो गीता के श्लोक, समझता नहीं प्रैक्टिकल कैसे जीवन में अपनाए, उसको समझाया है जो हमको नहीं समझते। तो उन श्लोकों में, उसमें 7वें अध्याय में 27वें श्लोक में आप घर पे जाके पढ़ सकते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन, ऐसा क्या गुनाह किया, स्वतंत्र भोग की इच्छा। इच्छा और द्वेष, ये दो चीज हमारे जीवन में आ गई तो उस समय हमें भगवान का धाम छोड़ के यहां पे आना पड़ा। भगवान ने इशारा किया किसको, किसको इशारा किया, दुर्गा जी को, ले जाइए जरा इसको, हा? जैसे पुलिस को करते हैं, ले जाइए जरा इसको, हा? अगर कोई ऑफिस में गड़बड़ कर दे तो सिक्योरिटी को इशारा करते हैं, ले जाइए, बोलते भी नहीं सिर्फ इशारा करते हैं। तो भगवान भी केवल इशारा करते हैं, बस इशारा भी नहीं करते, सिर्फ इच्छा करते हैं। जैसे ही हमारे हृदय में गलत इच्छा आती है, भगवान इच्छा करते हैं इनको जरा ले जाइए। ऐसी क्या इच्छा आई, ऐसी कौन सी इच्छा आ गई। अगर एक पिता के 10 पुत्र हैं, 10 पुत्र में से 9 पुत्र बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र हैं, बहुत अच्छे पुत्र हैं, अच्छा पढ़ाई करते हैं, टाइम पे खेलते हैं, टाइम पे खाते हैं, सब बात मानते हैं, सुबह उठ के प्रणाम करते हैं पिता को, पिता के चरण छूते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन एक पुत्र बहुत ही बदमाश, बहुत ही बदमाश, कुछ बात नहीं मानता, पिता की नाक में दम कर दिया है, तो क्या करेंगे उसके साथ आप। बहुत बार गुस्सा करने पे भी नहीं मानता, क्या करेंगे उसके साथ आप। बहुत माता पिता बैठे हैं, बताइए 10 पुत्र, माता जी बताइए क्या करेंगे आप। हॉस्टल भेज देंगे, माता जी बोली हॉस्टल भेज देंगे। आपने किया क्या ऐसा सच में? अच्छा तो आपके पुत्र तो बाजू में है शायद, नहीं तो अच्छा उत्तर दे रहे थे अभी, कुछ तो प्रश्न का उत्तर दिए। ठीक है, यहां के हॉस्टल तो भरोसा नहीं, उल्टा और बिगड़ जाए, लेकिन आइडियली सोचता है हॉस्टल में जाएगा, वहां का वार्डन रहेगा, रेक्टर रहेगा, अच्छे से ट्रेनिंग देगा, 10 साल रखो वहां पे, बाद में जाके लेके आओ। आइडियली ऐसा होता नहीं है, लेकिन सोचता है व्यक्ति ऐसा रहेगा। तो भगवान भी सोचते हैं लेके जाओ जरा इसको, हा? स्वतंत्र भोग की इच्छा। इच्छा, पहली इच्छा क्या आई, भगवान को देखा, अरे सारे लोग, अभी देखिए यहां पे कभी कभी एक युवक एक युवती के साथ मिलने की इच्छा रखता है, तो बाकी सारे युवक सोचते हैं, उनके हृदय में ईर्ष्या होती है, है? कभी कभी कोई बड़ा फिल्म एक्ट्रेस को देखते हैं तो लोगों के दिल में ईर्ष्या होती है, स्त्रियों के दिल में ईर्ष्या होती है, ये इतनी सुंदर क्यों है, पुरुष को ईर्ष्या होती है, अरे ये मेरे पास क्यों नहीं है। जब भगवान 16,000 स्त्रियों के साथ रासलीला करते हैं तो व्यक्ति सोचता है एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, और कोई पृथ्वी लोक की स्त्रियां नहीं, कोई देवलोक की अप्सरा नहीं, कोई वैकुंठ की लक्ष्मी नहीं, अरे सबसे सुंदर स्त्रियां भगवान के पास एक नहीं 16,000। और ऐसा नहीं कि भगवान उनको बंदी रखे हैं, जैसे कि 16,000 को बंदी रखे थे भगवान, उनको बाद में विवाह करके लाए, शादी किए, ऐसा नहीं कि भगवान उनको बंदी रखे हैं कहीं जाना मत, अरे वो 16,000 भीख मांग रही है भगवान से, हमें अपने पत्नी के रूप में स्वीकार करिए, और भगवान विरक्त बैठे हैं, कोई इच्छा ही नहीं उनको। सोचिए ऐसा कोई पुरुष, कोई इच्छा ही नहीं, और यहां पे 16,000 उनको भीख मांग रहे हैं। इतने, इससे पहले वाला जो चित्र था, इतने मित्र हैं, इतने मित्र हैं, इतने गोप कुमार हैं, लेकिन भगवान सेंटर में। कहीं पे भी अगर कुछ टीम रहेगा तो हर व्यक्ति की इच्छा होती है मैं इस टीम का हीरो बन जाऊं, होते कि नहीं होती। ऑफिस जाएंगे तो होता है सब लोग बस मेरी तरफ देखें, कॉलेज में जाएंगे तो मन करता है सारे मित्र बस मुझे ही माने, मैं हीरो हूं। बहुत लोग की इच्छा होती है, जैसे परसों हम जीनियस की बात कर रहे थे, सबकी इच्छा होती है मैं जीनियस बन जाऊं, मैं हीरो बन जाऊं। तो आध्यात्मिक जगत में भी कभी कभी, एक दिन भक्त पूछ रहे थे अगर हम आनंद में अभ्यासात हैं, आनंदमय हैं, आनंद की इच्छा में हैं, तो इस दुखालय में आए क्यों? हम दुखालय में नहीं आए थे, हमने भगवान को यह नहीं बोला हमें दुखालय में जाना है, हमने भगवान को इतने, ही इज द मेन हीरो, आप मेन हीरो हैं, भगवान को देखा मेन हीरो, देख देख के, देख देख के, देख देख के, एक दिन दिल में ईर्ष्या हुई, द्वेष आया, अरे मेरे को भी कभी हीरो बनने का चांस मिले, कभी मुझे भी भोग करने की चांस मिले। हमेशा यही करते रहते हैं सब लोग, कृष्ण 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 कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अभी अगर आप लोग जप नहीं करते, कुछ दिन जप करना शुरू करेंगे, 16 माला शुरू कर देंगे, रोज 2 घंटा हरे कृष्ण करेंगे, परिवार वाले बोलने लगेंगे अरे और कुछ नहीं मिला, हर समय कृष्ण 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 कृष्ण। जो स्त्रियां अकेली हैं, पति के साथ नहीं आई है यहां पे, जब वो हरे कृष्ण बोलती हैं, पति बोलते हैं अरे 2 घंटे से कृष्ण के साथ जप कर रही हो, थोड़ा मेरे को भी समय दो। जो पति अकेले आए हैं, पत्नी बोलती है हर समय कृष्ण कृष्ण कृष्ण, थोड़ा हमारे लिए भी समय निकालो। जो पुत्र आए हैं, मां बोलती है अरे पहले तो कॉलेज था, खेल था, अभी कृष्ण भी ऐड हो गया साथ में। जो मित्र हैं बोलते हैं अरे पहले तो हमारे साथ खेलता था, अभी क्या हो गया, पूरा वीरान सा हो गया, अपने विरक्त रहता है, कृष्ण 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 कृष्ण, इतना भी क्या कृष्ण कृष्ण हो गया, ऐसा भी क्या भगवान से आसक्ति, थोड़ा भगवान को भी आराम दो, थक जाएंगे भगवान। सुबह से रात तक कृष्ण 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 कृष्ण, अरे किसी को भी हृदय में द्वेष होएगा कि हर समय कृष्ण हर समय कृष्ण, जो भी खाओ कृष्ण को भोग लगा के खाओ, कितना टेंशन हो जाएगा जीवन में। भूख लगी है पहले सोचना पड़ेगा किसने बनाया है, भक्त ने बनाया कि नहीं बनाया, कृष्ण को अर्पण करो, मंत्र पढ़ो, फिर उसको खाओ, कितना टेंशन। तो एक व्यक्ति को अपने जीवन में ऐसा हीरो बनाना, मतलब हृदय में द्वेष आता है। आप बोलेंगे ये द्वेष नहीं है, ये द्वेष नहीं तो क्या, वो हीरो क्यों हर समय मैं उसको ऊपर क्यों दूं, कभी तो मुझे अपनी इच्छा से काम करने दो। इसीलिए लोग धर्म को देख के आंख बंद कर लेते हैं, अरे ये सब बकवास है, किसने देखा है 16,000 पत्नियां, किसने देखा है दिव्य धाम, चिंतामणि धाम, कल्प वृक्ष, किसने देखा है, ये सब बकवास है, अंधविश्वास है। क्यों? क्योंकि आपके भोग में ये बाधा बनता है तो हमको लगता है ये अंधविश्वास है। ये तो वही बात हो गई, एक चोर चोरी कर रहा है और बोलता है अरे पुलिस पकड़ लेगी, अरे कहां पुलिस, कौन पुलिस, पुलिस है ही नहीं, जब पकड़ेगी तो समझेगा पुलिस है ही नहीं। एक स्टूडेंट विद्यालय में कुछ गड़बड़ कर रहा है, बोले टीचर पकड़ लेगी, टीचर टीचर कहां है, कोई टीचर है ही नहीं, लेकिन टीचर तो है, पुलिस भी है, इसीलिए तो ये कारागार में फंस गए हैं। तो वो अपराध है क्या, स्वतंत्र भोग की इच्छा। एक छोटा बच्चा अक्सर मां से बोलता है, मां कुछ कर रही है मैं भी करूंगा, सुना कि नहीं सुना, मुझे करने दो। धीरे धीरे बड़ा होता है तो हर चीज खुद ही करनी है, इसी से समझता है कि हमारे अंदर कितनी इच्छा, बचपन से ही शुरू हो जाता है। छोटा बच्चा मैं अपने आप करूंगा, अलग अलग भाषाओं में अलग तरीके से व्यक्त करता है, लेकिन अपने आप करने की इच्छा बहुत होती है। तो हम भगवान को बोलते हैं अरे आपने बहुत भोग कर लिया, मेरे को भी थोड़ा भोग करना है, लेकिन भगवान को मालूम है मेरे बिना कैसे भोग कर पाएगा, मेरे बिना कैसे इंजॉय कर पाएगा, क्योंकि आत्मा का स्वभाव, जैसे कि मैंने कल बताया पानी का धर्म क्या है, पानी का धर्म क्या है, तरलता। बिना तरलता, बिना लिक्विडिटी के कोई सेंस है पानी का, क्या वो पानी रहा? अगर सॉलिड हो गया तो पानी रहा, वो क्या बन गया, बर्फ, पानी तो नहीं रहा वो। उसी प्रकार से अग्नि का धर्म क्या है, प्रकाश, गर्मी, जलना, टेम्परेचर, हीट, लाइट, अगर ये दो चीज नहीं तो अग्नि है क्या? अग्नि है ही नहीं। बर्फ में ना तो प्रकाश होता है ना गर्मी होती है, तो बर्फ में अग्नि है क्या? नहीं है। तो धर्म मतलब जिसको आप अलग नहीं कर सकते। अरे आत्मा का धर्म ही ऐसा है, भगवान की सेवा करना। जैसे ही उस धर्म को तोड़ा, हमारे जीवन में दुख ही दुख। ऐसा नहीं कि भगवान दुख दे रहे हैं, आत्मा जैसे कि मछली पानी के बगैर रह ही नहीं सकती। एक छोटा बच्चा मां के बगैर दुखी हो जाता है, उसी प्रकार से आत्मा भगवान से अलग होकर रह ही नहीं सकती। तो जैसे ही बोलती है आज मैं खुद करूंगा, आज मैं सब कुछ खुद एक्सपीरियंस करूंगा, तो भगवान ने बड़े कृपा से एक ऐसी जगह बनाई है जहां पे हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो है ये एक चौथाई भौतिक प्रकृति, भौतिक जगत, मेटीरियल वर्ल्ड। जाइए एक्सपीरियंस कीजिए। आपके परिवार में आप राजा, आपके मित्रों में आप राजा, एटलीस्ट आपके शरीर के आप राजा, जैसे इस्तेमाल करना करो। लेकिन हर जीव की अलग इच्छा होती है कि नहीं? हर जीव की अलग इच्छा होती है। अगर स्कूल में बोलो सब बच्चे खेलना चाहते हैं, हर कोई अलग खेल खेलना चाहता है। कोई क्रिकेट अच्छा लगता है, किसी को फुटबॉल अच्छा लगता है, किसी को बैडमिंटन अच्छा लगता है, किसी को चेस अच्छा लगता है। सबका अलग अलग गेम है। उसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में भी हमारे हृदय में अलग अलग इच्छाएं आती हैं। क्योंकि देखिए, अभी आप सबसे पूछूंगा आपका रोल मॉडल हीरो कौन है, आपका रोल मॉडल कौन है हीरो, जिसको देख के आपको लगता है ऐसा बनना चाहिए? सचिन तेंदुलकर। क्यों? क्रिकेट में इंटरेस्ट। आपका? मुकेश अंबानी है। क्यों? पैसा है, पैसा, हर चीज। इतना बड़ा बंगला है, खाली पड़ा है। मैंने सुना खाली पड़ा है कि नहीं? और किसी का और कोई बताएगा? आपका कौन है हीरो? हाँ, बिल गेट्स। वाह, क्यों? हाँ, वेरी रिच मैन। और क्या आप बताइए, कोई ऐसा है? आप बताइए। मदर टेरेसा। क्यों? सोशल लाइफ, सोशल वेलफेयर कितना किया? हाँ, दूसरों, अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पण किया। आपका? महात्मा गांधी। आप बताइए प्रभु जी, कोई तो होगा जिसको आप सोचते हैं ऐसा? कोई भक्त, कोई साधु, किसी का कोई तो होगा कुछ तो। हाँ, रोल मॉडल। और कोई पीछे बताना चाहेगा कोई? हाँ, धीरू भाई अंबानी। क्यों? स्टेप बाय स्टेप ऊपर किया, संघर्ष किया जीवन में। हाँ, ऐसे नहीं मिल गई प्रॉपर्टी, संघर्ष किया है। ऐसा क्या? हाँ, तो वो संघर्ष को मानता हूं, कहां से कहां चला गया। ठीक है, आप बताइए। हाँ, कौन? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अच्छा, ठीक है। और शिवाजी महाराज। क्यों? हाँ, बोलिए बोलिए। बहुत बहादुर बोल सकते हैं ऐसा? हाँ, बहादुर यह काम किया। तो देखिए, हर एक व्यक्ति यहां पे अलग चीज को सराहता है, अलग चीज को मॉडल रखता है, हर चीज की सराहना करता है। उसके लिए हृदय में ये सबसे बढ़िया चीज है, अपना जीवन दूसरे के लिए दे देना, किसी के लिए बहादुरी, किसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, किसी के लिए आप क्या बोले थे, पैसा, कोई धनी व्यक्ति, संघर्ष किसी के लिए, क्रिकेट किसी के लिए। ऐसे ही आध्यात्मिक जगत में भी हर जीव अपनी ही इच्छा प्रकट करता है। कभी कभी पिता के तीन चार पुत्र होते हैं तो परेशान हो जाते हैं, हर पुत्र की अलग इच्छा है। तो उस प्रकार से हमको वस्त्र मिलता है। कैसा वस्त्र? जलजा नव लक्षाणी, 84 लाख योनिया। जलजा नव लक्षाणी स्थावर लक्ष विंशति। जल में रहने वाली योनिया 9 लाख, पेड़ पौधे 20 लाख, रेंगने वाले जंतु 11 लाख, पक्षी 10 लाख, चतुष्पाद पशु 30 लाख, मनुष्या चतुर्लक्षति, 4 लाख, 4 लाख प्रकार की मनुष्य योनियां, प्लस बाकी सब 84 लाख योनियां, अनेक अनेक प्रकार की इच्छा अनुसार आपको शरीर दे दिया जाता है। इस कारागार में जा रहे हैं अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, वैसा शरीर भी देना पड़ेगा। अच्छा प्रश्न है, साइंस ने तो बहुत कुछ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, साइंस ने बिल्कुल नहीं प्रूव किए। कितने मालूम है साइंस को? कुछ मालूम नहीं। हर थोड़े दिन बाद एक नई स्पीशीज दिख जाती है तो डिस्कवरी हो जाता है उसका, फिर वो देखते हैं अरे ये ऐसा है, चलती है वैसे कर। और ये योनियां सिर्फ पृथ्वी पे नहीं, ये तो अलग अलग प्लैनेट्स की योनियां हैं, तो साइंस कैसे डिस्कवर कर सकती है? अरे साइंस को तो पृथ्वी के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन नहीं, और यहां तो इंफॉर्मेशन दे दिया भौतिक जगत में जितने भी लोक हैं, उच्च लोक, मध्य स्तर के लोक, नीच लोक, सबकी योनियों को डाल दिया यहां पे। तो साइंस तो कितना देख सकती है अपनी प्रत्यक्ष प्रमाण से कुछ, और फिर अनुमान लगा सकते हैं कि शायद मानव बंदर से आया होगा, बंदर लटक लटक के मानव बन गया, ऐसा लगाया ना अनुमान, बंदर लटक लटक के मानव बन गया, अनुमान लगा सकते हैं। ऐसा होता है क्या? वो होते हैं हमारे प्रभु जी एग्जाम्पल देते हैं, हायर इनकम, लोअर इनकम और मिडल इनकम क्वार्टर्स। तो लोअर इनकम क्वार्टर वाला जब हायर इनकम क्वार्टर में जाता है तो ऐसा नहीं कि वो क्वार्टर अपना शेप चेंज कर लेता है, ऐसा तो है ना कि छोटा 2 कमरे वाला सडनली 4 कमरे वाला हो गया, आज से आपकी इनकम 3 गुना हो गई। तो आप शाम को घर पे गए, जिस सुदामा का कुटिया, सुदामा की कुटिया छोटी कुटिया बड़ा महल बन गई। हमारे तो ऐसा नहीं होता, कल आप आज अस्पताल में आए तो 100 कमरे हैं, कल अस्पताल में आए सडनली 200 कमरे हो गए, एकदम एक्सपैंड हो गया, ऐसा तो नहीं होता। तो वो बोलते हैं बंदर की इच्छा हुई लटकने की, लटक लटक के वो इंसान बन गया, ऐसे तो नहीं होता। तो आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है, आत्मा एक मकान, जैसे व्यक्ति एक मकान छोड़ के दूसरे मकान में जाता है, ऐसे 9 लाख योनियों से एक योनि से दूसरी योनि में जाता है। भगवान अपनी इच्छा अनुसार और कर्मों अनुसार एक योनि देते हैं और उसके बाद वो 84 लाख योनियों में पूरा एक्सपीरियंस करके आता है वापस। बाद में ये मत बोलना अरे उसका एक्सपीरियंस नहीं किया, उसका नहीं किया, उसका नहीं किया। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था एसएल वर्ल्ड का, जब बच्चे को लेके जाते हैं बोलते हैं ये सारे हैं सब कुछ ले ले, बाद में मत बोलना वो वाला नहीं लिया, वो वाला नहीं लिया, वो वाला नहीं लिया, सब खेल खेल लो। ऐसे ही 84 लाख योनि है, सब खेल लो, सब पूरा इच्छा कर लो, लेकिन फिर भी बुद्धि सही रास्ते पर नहीं आए तो फिर से एक और राउंड ले लो, फिर तीसरा राउंड ले लो, चौथा राउंड ले लो, कितने राउंड चाहिए, लेते जाओ लेते जाओ, जब तक पूर्ण रूप से इच्छा पूरी ना हो जाए कि ये जगह क्या है, दुख आल्य, गुलाब जामुन में क्या है, कंकर, खीर में क्या है, रेत। अगर आपकी खीर में कोई रेत मिला दे तो कैसा लगेगा? हाँ? दिखने में मन बड़े चाह से उसके चम्मच को मुंह में डालेंगे और मुंह में डालते ही रेत का कचरा मुंह में आ गया, तो बड़े चाह से इंसान सोचता है वाह मित्र बनाएंगे, वाह विवाह करेंगे, वाह जन्म हो गया पुत्र का, वाह नौकरी मिल गई, बस शुरू होने की देर है कचरा मुंह में आने लगता है, अरे ये तो बहुत गड़बड़ है। तो 84 लाख होनिया, लेकिन इतनी बार कचरा मुंह में के आने के बाद भी आपको लग रहा है नहीं नहीं थोड़ी तो मिठास है ना, तो फिर भगवान कहीं रूप में आते हैं, तो वस्त्र हो गई, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और बंधन, किसी ने बोला बंधन, अगर कोई व्यक्ति बोलेगा अरे इस जगत में हमको रखा हुआ है, आप में से किसी को के ऊपर चेन बांधी हुई है? किसी को चेन से तो बांधा नहीं हुआ, ये कुर्सी पे आप बैठे हैं चेन से तो बांधा नहीं है आपको, हा? बंधन में तो नहीं बांधा, अपनी स्वेच्छा से बैठे हैं। ये भौतिक जगत ऐसा है कि किसी को लगता है चेन से नहीं बांधा, लेकिन फिर भी लोग इस जगत में रहने की इच्छा छोड़ नहीं रहे। ये इसे बोलते हैं दुर्ग, दुर्गा का नाम कैसे पड़ा, दुर्गा देवी, दुर्ग, जो दुर्ग संभालती हैं। अभी दुर्ग मतलब ऐसा कारागार, ऐसा प्रिजन हाउस, ऐसा किला जिसमें लोगों को बांध के रखा है। दुर्ग मतलब बहुत कठिन, ऐसा बंधन है, ऐसी जगह है जहां बंधन नहीं बांधा हुआ फिर भी कोई तोड़ने को छोड़ने को तैयार नहीं। अब सोचिए ऐसा कारागार, खुला छोड़ दिया, नहीं नहीं हम तो यहां से बाहर नहीं जाएंगे, ऐसा कारागार। भगवान का शक्तियों का ऐसा प्रभाव है कि बार बार मुंह में कचरा आने के बावजूद भी, बार बार बाधाएं आने के बावजूद भी, एक एक बूंद के लिए इंसान तरस रहा है। इधर नहीं, थोड़ी तो मिठास मिल रही है, थोड़ी तो मिठास मिल रही है। अरे भगवान बोल रहे हैं तुम मेरे धाम में आ, तुम्हें मिठास की कढ़ाई में डुबा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये कचरे वाली मिठास अच्छी लग रही है। हर समय अगर मीठा हो जाएगा तो बोर हो जाऊंगा मैं, हर समय अगर सुख देंगे दुखी नहीं होगा तो बोर हो जाएंगे, चैलेंज नहीं रहेगा जीवन में। लेकिन भगवान के जीवन में ऐसा सुख है जो पल पल बढ़ता ही जाता है, वहां बोर्डम नहीं है, ऐसा नहीं कि बोर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इंसान यहां छोड़ने को तैयार नहीं, क्योंकि तीन प्रकार के बंधन हमको बांध के रखे हैं, तीन प्रकार के गुण, सत्व, रज और तमोगुण। बंधन ये तीन प्रकार के गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, वो बांध के रखे हैं इंसान को। कभी किसी ने रस्सी को देखा है, रस्सी बनाई है किसी ने कभी? रस्सी कैसे बनती है? रस्सी कोई बताएगा रस्सी कैसे बनती है? फाइबर से। कैसे बनाते हैं फाइबर्स को? ट्विस्ट करते हैं, है ना, आपस में ट्विस्ट करते हैं। एक छोपत्ती रस्सी बनेगी तो तीन फाइबर को ट्विस्ट करेंगे, फिर एक बड़ी रस्सी बनानी है तो और फाइबर उस पतली वाली रस्सी को आपस में ट्विस्ट करेंगे, ऐसा घुमाएंगे, फिर और बनानी है तो और चार को घुमाएंगे, इसे कर करके मोटी 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 रस्सी बन जाती है। उसी प्रकार से इस जगत में सत्व, रज और तमो गुण का मिक्स करके उस बंधन से जीवों को बांधा हुआ है। देखिए हर जीव का टेस्ट अलग रहेगा। सत्व गुण के लोग कैसे रहेंगे? तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अन्नामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानक। वो सुख और ज्ञान से बंधे हुए हैं, उनको ज्ञान में बहुत सुख मिलता है, ज्ञान प्राप्त करने में और सुख में सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं। बोलेंगे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, बस दो रोटी मिल रही है, सुबह नौकरी पे जा रहे हैं, 8 घंटा नौकरी करके शाम को आ रहे हैं, बस और क्या चाहिए, सुख चल रहा है। रजोगुण लोभ प्रवृत्ति आरंभा कर्म न अशमस्प्रिय। लोभ लालच, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, 8 घंटा नौकरी है चलो पार्ट टाइम 6 घंटा करते हैं, पार्ट टाइम 6 घंटा है चलो सोते समय भी कुछ करते हैं, रात को तो कोई नाइट जॉब करते हैं, वहीं पे सो जाएंगे पैसा भी मिलेगा। रजोगुण इतने से कुछ सुखी नहीं, इतना और ऐड करो और ऐड करो और ऐड करो और ऐड करो। लोभ प्रवृत्ति आरंभ, तामसिक लोग कैसे रहते हैं? तामसिक अग्रेसिव नहीं रहते, वो राजसिक गुण रहते हैं। तामसिक मतलब छोड़ो ना क्या रखा है इस दुनिया में, बस सो जाओ। निद्रा आलस्य प्रमाद मोह पागलपन, सो नहीं तो नशा करो सब भूल जाओ। पागलों की तरह नाचो सब भूल जाओ। प्रमाद आलस्य, हमारे अभी आप कोई बोला जैसे हाँ हॉस्टल में भेज दिया, हॉस्टल में क्या होता है आजकल, कॉलेज गए कॉलेज से छुट्टी मिला बस आके सो जाओ, 10 घंटा 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा 15 घंटा 18 घंटा सोते रहो बस। निद्रा आलस्य प्रमाद, कभी ये नहीं सोचते आज छुट्टी है तो क्या करेंगे, चलो आज अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, आज हम ब्रह्म जिज्ञासा करेंगे, भगवत गीता का अध्ययन करेंगे, थोड़ा फ्री टाइम मिला सो जाओ, दैट इज तामसिक गुण। और देखिए हर व्यक्ति इन तीन गुणों से प्रभावित है। शायद आप 6 बजे यहां पे आए थे तो सत्व गुण का प्रभाव था, चलो ज्ञान, अभी धीरे धीरे थकते जा रहे हैं, उबासियां आ रही हैं तो धीरे धीरे तामसिक प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए हम 5 मिनट ब्रेक लेंगे जल्दी ही फिर 1 घंटा और करेंगे और खत्म करेंगे आज का। लेकिन तो हर दिन शुरू होता है सत्व से, दोपहर होती है रजो से, शाम को तमस से, बंधन में बंधे हुए हैं। तो कोई व्यक्ति पूछेगा, अरे हमको इतना घोर बंधन में, दुखाले में डाल दिया, भगवान अगर शक्तिशाली हैं तो कृपावान नहीं, अगर कृपावान होते तो इतना दुख नहीं होता, हर समय पीड़ा। ठीक है, अगर मान लिया कृपा है लेकिन शक्ति नहीं, इलाज तो कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, वो दुख ठीक नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे, क्या करना चाहिए? भगवान उद्देश्य दिए हैं, भगवान इंस्ट्रक्शन दिए हैं, भगवान घोषणा किए हैं अपने भगवत गीता में कि हे जीवों, ऐसा मत सोचो कि मैं शक्तिशाली नहीं हूं, ऐसा भी मत सोचो कि मुझे दया नहीं आती। अरे दया आती है, इसीलिए तो गीता, साधु, शास्त्र, अवतार ये सब भेजता रहता हूं टाइम टाइम पे, टाइम टाइम पे भेजता रहता हूं। बच्चे को हॉस्टल भेज दिया तो पिता कुछ गिफ्ट भेजते रहते हैं, फोन करते रहते हैं कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। आप बच्चे को हॉस्टल भेजे थे, बीच में फोन करते कि नहीं करते थे, करते थे कि नहीं, मिलने गए थे कभी एक दो बार? हर सैटरडे, देखिए सामने सबूत है हमारे। तो पिता पुत्र को छोड़ नहीं देते, देखते हैं और उन्होंने देखा हॉस्टल में बढ़िया काम नहीं हो रहा, वापिस ले आओ। तो भगवान भी देख रहे थे, अरे ये तो चक्कर काटते ही जा रहे हैं, काटते ही जा रहे हैं, काटते ही जा रहे हैं, ये असली मिठास को भूल गए हैं गुलाब जामुन की, कंकर वाला गुलाब जामुन खा रहे हैं। तो अवतार भेजते हैं, साधु भेजते हैं, शास्त्र भेजते हैं, और गीता में घोषणा करते हैं, लिखा है 9वां अध्याय 29वां श्लोक, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय न मे द्वेष्योस्ति। सब जीवों को मैं समान देखता हूं, किसी से द्वेष नहीं है मेरे को, कोई मजा नहीं आ रहा आपको सजा देने में, लेकिन आपके किए अनुसार सजा दे रहा हूं। आप कर्म ही ऐसे करते हैं, मैं क्या करूं, कर्म ही ऐसे करते हैं तो क्या करें हम, पुरस्कार दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं, कभी पनिशमेंट कभी सजा देते हैं परमात्मा के रूप में। आप बोलेंगे हमारा जज कौन है, परमात्मा के रूप में कॉन्टिन्यूस देख रहे हैं। भूतानां हृदय से अर्जुन दिश्यति, भगवान आत्मा के साथ परमात्मा के रूप में चुपचाप बैठे हैं, देख रहे हैं क्या कर्म कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, और देख रहे हैं कब ये जीव मेरी तरफ मुड़ के देखेगा, कब ये जीव देखेगा कि सारी मिठास का स्रोत्र, सारे आनंद का स्रोत्र तुम्हारे बाजू में बैठा है। जैसे कि मैंने पहले दिन बोला था, बगल में छोरा, गांव में ढिंडोरा। हाँ, नहीं मैंने ये नहीं कहा, आत्मा के बगल में परमात्मा बैठे हैं। आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, परम आत्मा, परम मतलब परम भगवान, आत्मा अलग है, परम आत्मा अलग है, आत्मा अणु है, परमात्मा विभु है, अंदर है साथ। जैसे पिता बच्चे को हॉस्टल भेजे तो बाद में देखते रहे हॉस्टल में सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, देख रहे हैं परमात्मा। इसलिए हम बोले निर्णय क्रिया अनुसार, क्रिया अनुसार, जैसा क्रिया वैसा इफेक्ट आता है, सही बोले आप बिल्कुल। तो परमात्मा देख रहे हैं, तो जब परमात्मा देख रहे हैं, आप सोचिए हमेशा साथ में कोई बैठा है देख रहा है, तो क्या करेंगे आप, चिंता हो जाएगी, ऐसा क्या करें कि ये कारागार से, सोचिए हर समय पुलिस साथ में बैठी है देख रहे हैं, हाँ कर क्या करता है, हर समय एवरी मोमेंट इज सीन, हर क्षण आपको देख रहा है कोई, अगर आप कमरे में बंद हैं तो भी देख रहा है कोई, अकेले जंगल में है तो भी कोई देख रहा है, हर समय कोई ना कोई देख रहा है। ये तो घबराहट हो जाएगी, अरे थोड़ा भी समय अकेला नहीं, तो ऐसा क्या करें कि वो जो हर समय हमको देख रहा है वो पूर्ण रूप से हमसे खुश हो जाए और हमको इस हॉस्टल से, इस कारागार से हमेशा के लिए अपने मूल निवास में वापस ले जाए, जहां पे हर शब्द गाना है, हर चाल डांस है, नृत्य है, हर आदान प्रदान में पूर्ण रूप से प्रेम है, पूर्ण मिठास है, कोई कंकर नहीं है, कोई कचरा नहीं है। ऐसा क्या करें? हमारे साथ में हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान है और हमारे एक एक एक्शन को, एक एक क्रिया को देख रहे हैं और क्रिया अनुसार हमारा गंतव्य निर्धारित कर रहे हैं। हरे कृष्णा। थोड़ा शांत हो जाएंगे तो बड़ी कृपा होगी, समय कम है, सफर बहुत लंबा है। फीडबैक फॉर्म रख लीजिए, आखिरी एक घंटे की कथा के ऊपर भी फीडबैक दे देना बाद में। हरे कृष्णा। आप सब डेस्टिनेशन, तो क्रिया अनुसार गंतव्य बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व है कि हम किस समय क्या कार्य करते हैं। तो हम लोगों ने आमतौर पर सुना है पुण्य और पाप कर्म। अभी ये बहुत ही गहरा विषय है और ये विषय पे अगर हम दो घंटे भी चर्चा करें तो काफी नहीं है, लेकिन हमने तो दो घंटे में बहुत सारे विषय पर चर्चा कर ली और करेंगे अभी। इसीलिए फिर से विनती करता हूं कि आप हर थर्सडे को जरूर आना 7:30 बजे, क्योंकि अगर 5 दिन में तो हमने बहुत सारे टॉपिक पे फटाफट जल्दी जल्दी बोल दिया, हर किसी टॉपिक को हमने सिर्फ छुआ है, लेकिन हर एक टॉपिक को हम, हर एक विषय को अलग से हम एक पूरा दिन डिस्कस करते हैं, मतलब एक सेशन शाम को 1-2 घंटा में उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो इसलिए मैं फिर से याद दिला रहा हूं कि अभी हम सिर्फ छू रहे हैं हर विषय को और उसमें से एक विषय है कर्म का। तो भगवान गीता में बोलते हैं गहना कर्मणो गति, ये जो कर्म की गति समझना है ये गहना है, बहुत गुह्य है, मिस्टीरियस है। बोधव्यम च विकर्मण कर्मणो ही बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मण अकर्मश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति। बहुत गहना है, बहुत गुह्य है, लेकिन हर एक व्यक्ति को इसे समझना चाहिए। कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है, पाप कर्म क्या है, पुण्य कर्म क्या है और अकर्म क्या है। अभी तक हमने पुण्य और पाप कर्म के बारे में सुना रहेगा। पुण्य कर्म, जो कर्म शास्त्र के अनुसार किया जाए, पहली बात, जो कर्म शास्त्र के अनुसार किया जाए, शास्त्र में बोला है झूठ नहीं बोलना तो झूठ नहीं बोलो, शास्त्र में बोला है मांस नहीं खाना तो मांस मत खाओ। आवाज साफ आ रहा है सबको पीछे तक? तो शास्त्र में जो दिया गया, मंदिर जाना, देव की उपासना करना, भगवान की उपासना करना, तो वैसे करो, पुण्य कर्म शास्त्र के द्वारा निर्धारित। दूसरी चीज पुण्य कर्म के बारे में है कि जो आप कर्म करते हैं उससे कुछ अच्छे फल की आशा रखते हैं। अगर ऐसे करूंगा तो अच्छा पुत्र मिलेगा, ऐसे करूंगा तो अच्छा पति या पत्नी मिलेंगी, ऐसा करूंगा तो अच्छी विद्या मिलेगी। ऐसा एक सिंपल सी चीज, एक विद्यार्थी के लिए स्कूल में जाके अच्छी तरह से पढ़ाई करना पुण्य कर्म है। क्यों? अच्छे से पढ़ाई करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, पढ़ाई नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा। तो पुण्य कर्म मतलब शास्त्र के द्वारा निर्धारित और फल क्या, कुछ अच्छा फल की आशा। अभी सबके लिए अच्छे फल की परिभाषा भी अलग होती है, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में इतना ही बोलूंगा, अच्छे फल की आशा। दूसरा होता है पाप कर्म, जिसे बोलते हैं विकर्म। विकर्म मतलब शास्त्र से दिया गया उल्टा करने का, जो शास्त्र में दिया है उससे उल्टा, इसे बोलते हैं तामसिक बुद्धि। तामसिक बुद्धि मतलब जो करना है उससे उल्टा। सात्विक बुद्धि मतलब जो बोला है वैसा ही करो। राजसिक बुद्धि मतलब कंफ्यूज, क्या करना है मालूम नहीं। राजसिक बुद्धि मतलब मालूम नहीं क्या करना है, ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, जो भी करना है मेरे को फल अच्छा मिलना चाहिए। सात्विक बुद्धि मतलब मालूम है क्लियरली, ये करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। तामसिक बुद्धि मतलब बोलो बैठ जाओ तो खड़े हो जाएगा, खड़े हो जाओ तो बैठ जाएगा, खाना खाओ नहीं खाऊंगा, नहीं खाओ आज तो जरूर खाऊंगा, मांस खाओ मांस नहीं खाना और मांस तो दबा के खाऊंगा, जो बोला उससे उल्टा जरूर करना है। नशा नहीं करने का, नहीं करने का, चार बोतल पीऊंगा आज तो मैं, जो बोलो उससे उल्टा, दैट इज तामसिक बुद्धि। पाप कर्म शास्त्र से उल्टा। और दूसरा क्या है, इसका फल बुरा मिलता है। तो पहला था पुण्य कर्म जो शास्त्र के अनुसार और फल अच्छा मिलता है, पाप कर्म शास्त्र के विरुद्ध फल बुरा मिलता है। लेकिन फल तो दोनों में मिलता है। और भौतिक प्रकृति का स्वभाव क्या है कि जब तक आपको फल मिलेगा उस फल को भुगतने के लिए आपको एक शरीर धारण करना पड़ेगा। जब तक कुछ फल की आशा रखेंगे अच्छा या बुरा, जब तक इस भौतिक जगत के किसी भी चीज की आशा रखेंगे तो उसका फल भुगतना पड़ेगा। किसी भी चीज में हाथ डालेंगे तो कुछ तो प्रतिक्रिया होगी, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होगी। अच्छा, एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। तो पुण्य कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, लेकिन अच्छा फल भुगतने के लिए भी इस जगत में रहना पड़ेगा। और ये जगत क्या है, दुखालय। अभी आप बोलेंगे मैंने तो बुरा कर्म नहीं किया, लेकिन जगत का स्वभाव है दुखालय। एक कोयले की खान में आप सफेद कुर्ता सफेद धोती सफेद कपड़ा सफेद टोपी सब कुछ सफेद पहन के जाओ और बोलो मैं तो सफेद कपड़ा पहन के गया था, वापिस क्या आप सफेद आएंगे? अरे गए तो आप कोयले की खान में थे। कोयले की खान मतलब काला करेगी ही आपको। आप बोलेंगे लेकिन क्यों, अगर मैंने पाप कर्म किया ही नहीं तो काला क्यों करेगी? ये बात भी सही है। अगर पाप कर्म किया ही नहीं, हमेशा अच्छा सोचती हूं अच्छा बोलती हूं अच्छा करती हूं अच्छा करता हूं सोचता हूं बोलता हूं, फिर क्यों, आखिर क्यों? अरे भौतिक जगत ऐसा ही बना है कि आपके ना चाहते हुए भी आप बुरा करेंगे। अरे यहां पे तो आप चलेंगे तो चलते चलते कितने कीटाणु मरते हैं, अरे आप सांस लेंगे तो आपके सांस में कितने कीटाणु मरते हैं, अरे आप खाना बनाते हैं, मांस खाना तो दूर की बात, अगर पेड़ पौधे भी खाएंगे तो अगर आप पेड़ पौधे कुछ तोड़ रहे हैं तो दर्द दे रहे हैं उसको, तो पौधे खाने से भी पाप लगता है, सिर्फ मांस खाने से पाप नहीं लगता। कल हम चर्चा कर रहे थे इसके बारे में किसी तो सज्जन से, कोई पूछ रहे थे, आप पूछ रहे थे हाँ। तो शाकाहारी से भी पाप लगता है, तो क्या करें, भूखे रहें? क्या करें, सांस लेना बंद कर दें? क्या करें, चलना बंद कर दें? सीधी तरह से बोलो ना कि आत्महत्या कर लें, है कि नहीं? जब तक जिएंगे मतलब कर्म इकट्ठा करेंगे, पाप से नहीं बच सकते। या तो कोयले की खान में एंट्री मत करो, अभी एंट्री हुए तो काले तो होंगे ही भाई, हम तो सफेद कपड़े पहन के गए थे ना, लेकिन माफ करिए ये खान ऐसी बनी है, यहां पे तो कदम कदम पे आप पाप एकत्रित कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें पुण्य नहीं करने का, हमें पाप नहीं करना, हमें एक तीसरा करना है, वो क्या है, अकर्म। पाप नहीं पुण्य नहीं अकर्म। अकर्म यानी जिसका कुछ प्रतिक्रिया नहीं होती, निष्पक्ष कार्य। अभी लोग गीता के बारे में बोलते हैं, जो हमने पहले दिन किसी ने प्रश्न उठाया था कि लोग बोलते हैं गीता को रखने से घर पे युद्ध हो जाता है। गीता तो युद्ध के लिए लड़ी गई थी, बोली गई थी कि अर्जुन ही उठो युद्ध करो, आतिष्ट उत्तिष्ठ भारत, खड़े हो युद्ध करो, कायर मत बनो। अरे भगवान ने एक जगह नहीं, चार पांच छह सात आठ जगह बोला है कि युद्ध करो। अगर आपने किसी ने ध्यान से गीता पढ़ी होगी तो आपको आज एक सीक्रेट बताता हूं गीता का, शायद आप नोट करना भूल गए रहेंगे, तो आपको मालूम चलेगा कृष्ण ने भी कितनी बड़ी गलती करी है। आप जानना चाहेंगे भगवान कृष्ण ने एक गलती करी थी बोलते समय? अरे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम पूर्ण ज्ञानी पुरुष ने एक गलती करी, एक बार नहीं पांच बार वो गलती करी, चार या पांच बार। अरे गीता में बोलते हैं दिव्य पुरुष के लक्षण है अहिंसा, दिव्य गुण है अहिंसा। ये अहिंसा शब्द भगवान ने चार या पांच बार इस्तेमाल किया है, और किसको बता रहे हैं अहिंसा? अर्जुन को, अर्जुन को। और गीता का मकसद क्या है, गीता का उद्देश्य क्या है, गीता का गंतव्य क्या है? युद्ध करो। ये कैसा ज्ञान हुआ, अहिंसा 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 अहिंसा, एंड में युद्ध करो। इसलिए मैंने बोला ऐसे भगवान जिनका कोई करेक्टर ही नहीं है, मालूम नहीं क्या बोलते हैं क्या करते हैं मालूम नहीं। लोग ऐसा बोलते हैं राम है तो जो बोलते हैं वही करते हैं, कृष्ण तो क्या बोलते हैं क्या करते हैं कुछ समझता है नहीं, सब कंफ्यूज करता है अपने को। कृष्णा मीन्स ऑलवेज कंफ्यूजिंग, दुनिया कंफ्यूज है कृष्ण के बारे में। इसलिए बोलते हैं कंफ्यूजन हो तो ऐसी, इसलिए बोलते हैं कृष्ण मतलब हीरो नंबर वन, हर चीज में हीरो, सन नंबर वन, फ्रेंड नंबर वन, लवर नंबर वन, फाइटर नंबर वन, और कंफ्यूजन क्रिएटर में भी नंबर वन। आदमी को कंफ्यूज करते हैं तो ऐसा घुमा देते हैं कि आदमी सोचता रहेगा ये भगवान है या पुरुष है। इसीलिए सही गुरु के पास जाना बहुत जरूरी है, इसीलिए आपको हर थर्सडे को आना बहुत जरूरी है क्योंकि अभ्यास करना पड़ेगा। अरे कंफ्यूज ना हो जाएं, ये कृष्ण के बारे में भक्ति करेंगे तो दुनिया हमें कंफ्यूज कर डालेगी। निष्पक्ष कर्म, ऐसा कौन सा कर्म करें, अर्जुन को बोला युद्ध करो तुम्हें रिएक्शन नहीं मिलेगा, प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। अरे हम तो एक कीटाणु को मारते हैं तो प्रतिक्रिया मिलती है, अर्जुन युद्ध भूमि में लाखों लाखों लोगों को मार डाला और बोले तुम्हें हल्का सा भी उसका प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी, इतना खून बहाया प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। गीता में वो मार्ग सिखाया है निष्पक्ष कर्म। इसलिए मानव जीवन जो है उत्तरदायित्व का जीवन है, हम सीखेंगे निष्पक्ष कर्म क्या है, लेकिन मानव जीवन उत्तरदायित्व का, व्यक्ति बैठा है सोच रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस क्षण आपने देखा कभी चेहरे में, जब आईने में जब भी चेहरा देखो तो देखो अरे मेरे पास तो मानव शरीर है, कोई चीते का शरीर नहीं है, बिल्ली नहीं हूं मैं, कुत्ता भी नहीं हूं, चींटी भी नहीं हूं, घोड़ा भी नहीं हूं, अरे ये तो मानव शरीर है, मतलब उत्तरदायित्व। अगर एक चीता या शेर किसी जानवर को मारता है तो भगवान नहीं बोलते तुम्हें पाप लगेगा, क्योंकि जानवर को तो बुद्धि ही नहीं दी गई भेद करने की क्या सही है क्या गलत है, लेकिन जब मानव शरीर आ गया तो बुद्धि दी गई है क्या सही है क्या गलत है, कौन भगवान है कौन साधारण पुरुष है कौन देवता है, यह देखने की। अगर वो उस उत्तरदायित्व को सही से इस्तेमाल नहीं करेगा तो मानव जीवन व्यर्थ गया, उसको कुछ चीज दी गई थी गलत इस्तेमाल करी, उसका कर्म भुगतना पड़ेगा उसको, इसे बोलते हैं उत्तरदायित्व। कई प्रकार से कर्म भुगतना पड़ता है। अगर आप एटीएम मशीन में जाएंगे कार्ड डालेंगे तो फट से पैसा मिलेगा, इसे बोलते हैं क्षणिक प्रतिक्रिया। लेकिन किसी को पैसा देना है और चेक के देंगे, उसको एक लाख रुपए देने के चेक देंगे आप, तो चेक से टाइम लगेगा, बोलते हैं ना जब तक चेक क्लियर नहीं होएगा आपकी चीज आपके पास नहीं आएगी, चेक क्लियर होना चाहिए, हाँ तो टाइम लगता है उसको भी, तो बोलते हैं विलंबित प्रतिक्रिया। तो जब साधारण आदान प्रदान में क्षणिक और विलंबित प्रतिक्रिया होती है, ऐसे ही कर्म में भी, ये कोई प्रेम नहीं दिखा रहे, झापड़ मार रहे हैं ऐसे लगेगा प्रेम दिखा रहे हैं। अगर कोई किसी को झापड़ मारता है तो उल्टा झापड़ पड़ता है सीधा, उसे बोलते हैं क्षणिक प्रतिक्रिया। थोड़ा सा गलत व्यवहार करेगा तो झापड़ पड़ेगा, क्षणिक प्रतिक्रिया। लेकिन विलंबित प्रतिक्रिया, अगर किसी को अभी किसी ने आके सीधा उसको मारना चाहा तो बोला ऐसा क्यों, क्यों मारना चाहा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया उसके लिए। ऐसे बोलते हैं अरे किसी को, कोई बॉम्ब विस्फोट में मारा गया, कोई ट्रेन में मारा गया, कोई एक्सीडेंट में मारा गया, कोई ट्रेन के नीचे कुचला गया, क्यों, क्या किया था उसने, क्या किया था, कुछ भी, दिखने में तो कुछ नहीं किया। हो सकता है उस समय दान दे रहा था जिस समय बॉम्ब विस्फोट हो गया, अरे मैं तो, हो सकता है उस समय हरे कृष्ण का माला ही जप कर रहा था जब बॉम्ब विस्फोट हो गया, उससे अच्छा क्या हो, वाह मरते समय भगवान को याद किया। लेकिन साधारण दृष्टि से अरे मंदिर में ही बैठा था बम विस्फोट हो गया, मंदिर में बम विस्फोट, सोचिए मंदिर के अंदर कैसे भगवान है, खुद को नहीं संभाल पा रहे दुनिया को क्या संभालेंगे, तो कोई भी विचार आएगा। लेकिन इसे बोलते हैं विलंबित प्रतिक्रिया, जिसमें प्रभाव दिख रहा है कारण नहीं दिख रहा। जब चेक दिया, चेक का पैसा आया बहुत समय बाद आया, प्रभाव दिखा लेकिन कारण नहीं दिखा। कभी कभी क्या होता है व्यक्तिगत प्रतिक्रिया, एक्सीडेंट हुआ इंसान अकेला ही मर गया गाड़ी के नीचे। लेकिन कभी कभी भगवान क्या करते हैं, कभी कभी एक भक्त बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं, अभी कभी स्कूल में दो बच्चे शैतानी कर रहे हैं, दो बच्चे बहुत झगड़ा कर रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, तो दो बच्चों को बुलाते हैं स्टेज पे, बुलाएंगे, टीचर कुछ नहीं करेगी, बोले कि चलो खड़े हो जाए दूसरे के सामने, तुम उसको मार, तुम उसको मार, इसको ये 10 थप्पड़ मार, तुम उसको 10 थप्पड़ मार, आपस में लगा दिया, वो टीचर देख रही है। कभी कभी क्या करते हैं, सबको एक साथ, हाँ अगर सब बड़ा किसी ने साथ में कुछ गुना किया हो, सबको एक साथ एक सजा दे देते हैं, आपस में भुगत लो। तो एक होता है व्यक्तिगत प्रतिक्रिया, एक होता है सामूहिक प्रतिक्रिया। जितने भी लोग पाप कर्म किए थे सबको डाला एक फ्लाइट में, उनको नहीं मालूम, बैठ रहे हैं साथ में, चढ़ रहे हैं फ्लाइट में, जेट एयरवेज जो सा भी एयरवेज है, बाद में क्या होने वाला है मालूम नहीं, लेकिन भगवान को मालूम है। इसमें जो भी आदमी टिकट खरीदा है वो कहीं पे कुछ तो क्रिया किया था, आज भगवान के वॉशिंग मशीन से वो ऐसे निचोड़ेंगे, 100 के 100 लोगों को एक साथ निचोड़ डाला। इसे बोलते हैं सामूहिक प्रतिक्रिया। इसलिए बोले ये जगत जो हमने चर्चा किया, ये जगत वॉशिंग मशीन की तरह है, कैसे निचोड़ते हैं मालूम नहीं, इसका मैनुअल दिया है, चर्चा की हम इसके ऊपर, सामूहिक प्रतिक्रिया। फिर कोई बोलेगा अरे मुझे मालूम नहीं, काफी लोग बॉम्बे में आते हैं, बोलते हैं लोकल ट्रेन में चढ़ जाते हैं और मालूम नहीं होता, फर्स्ट क्लास में घुस गया, लेडीज में घुस गए, ट्रेन चल पड़ा, खास तौर पर अगर लेडीज में घुस जाओ, अरे ट्रेन चल पड़ा, सब चिल्लाने लगे उतरो उतरो, लेकिन इससे पहले उसको समझे उतरना है, ट्रेन चल पड़ी, अगले स्टेशन पे उतरा, उतरते ही सामने वो पुलिस वाला भी लेडीज के सामने खड़ा होता है या फर्स्ट क्लास के सामने, अभी वो आदमी वो तो पूरा, मैं तो पहली बार आया था, मुझे तो मालूम नहीं था, तो हम सभी बोलेंगे हमें तो किसी ने ज्ञान दिया ही नहीं, हमारे तो पिताजी ने बताया नहीं बचपन में, हमारी तो माता ने बताया नहीं कि ऐसे होता है, हमको तो बताया नहीं ये कारागार है, हमको तो बताया नहीं कि ये ड्रेस पहनाई है अपने को ये शरीर, हमको तो बताया नहीं कि हम भगवान से द्वेष करके इधर आए हैं, ये सब तो नहीं बताया अपने को, फिर सजा क्यों दी। कभी आप इंस्पेक्टर से पूछ सकते हैं कि मेरे को मालूम नहीं था कि फर्स्ट क्लास में नहीं चढ़ना, वो बोलेगा ठीक है फाइन दो मालूम चल जाएगा, फाइन दो मालूम चल जाएगा, आगे से याद रहेगा हमेशा। इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज, मुझे मालूम नहीं था ऐसा नहीं बोल सकते। भगवान ने बहुत कोई भी उन भगवान ने बहुत तरीके बनाए इंसान को सही रास्ता दिखाने के लिए। कितनी बार हम मुंह मोड़ के निकल गए, कितनी बार वो 84 लाख के चक्कर से साधुओं को मिलके शास्त्र देख के भी देखा अनदेखा कर दिया, चल एक और 84 लाख बेटा, चल बेटा एक और 84 लाख, चल एक और, चल एक और, फिर एक दिन बोले आपने बताया नहीं, मालूम नहीं था। फिर और एक बड़ा एक भ्रम है, लोग सोचते हैं ठीक है बुरा कर्म किया तो क्या किया, थोड़ा अच्छा कर्म कर लो। जब पार्टी में गए तो थोड़ी शराब पी ली, थोड़ा मांस खा लिया, और संडे के संडे मंदिर भी हो आए, शनिवार को मंदिर भी हो आए, तो पुण्य और पाप आपस में कैंसिल हो गया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ऐसा भी नहीं होता, पुण्य और पाप आपस में कैंसिल नहीं करते। हम उधर एक रेस्टोरेंट में गए खाने के लिए, नहीं किसी ने तो बुलाया था पिछली बार शायद, यही पता नहीं आपको बताया किसी को तो बताया था, एक रेस्टोरेंट में गए और उस रेस्टोरेंट में जितना भी फर्नीचर था वो उधर ऐसे शैंडेलियर लटक रहे थे, शैंडेलियर, और वो शैंडेलियर किसके लटक रहे थे, वो खोपड़ी थी। तो मैं पूछा ये खोपड़ी क्या है, बोला ये एक इंसान की असली खोपड़ी है, वो खोपड़ी को उन्होंने शैंडेलियर बना दिया और उसके अंदर बल्ब लगा हुआ है और ऐसे पूरे रेस्टोरेंट में खोपड़ियां लटक रही हैं, मछलियां लटक रही थी, वो मछली लटक रही थी। तो मैंने पूछा ये मछली क्या है, मुझे लगा प्लास्टिक की होगी, तो मालूम चला वो असली मछली को मार के अंदर का सब मांस निकाल के उसके स्केलेटन को लेके एक शैंडेलियर बना दिया और उसके अंदर बल्ब डाल दिया और बड़ा सुंदर दिख रहा है, दिखने में तो पूरा रेस्टोरेंट मछलियां लटक रही हैं। जब मालूम चला ये मृत शरीर है तो मैं घबरा गया, अरे ये तो मृत शरीर है, मृत शरीर को हाथ लगा लिया। और फिर वो बोले ठीक है थोड़ा पाप किया तो क्या किया, इतना भी पाप नहीं किया, थोड़ा बहुत पुण्य भी करते हैं हम, कैंसिल हो जाएगा, कभी कभी मंदिर भी जाते हैं हम, भजन भी करते हैं, लेकिन अच्छा कर्म और पुण्य कर्म, बुरा कर्म और अच्छा कर्म आपस में कैंसिल नहीं करता, रद्द नहीं करते। मानव जीवन उत्तरदायित्व का जीवन है, उत्तरदायित्व मतलब सीखना पड़ेगा पाप कर्म क्या है, पुण्य कर्म क्या है और अकर्म क्या है। फिर मैं करूं तो करूं क्या, ये नहीं करना वो नहीं करना, करूं क्या, वो बेचारा कंफ्यूज है। हम सब की यह स्थिति है इस जगत में, चलूं तो पाप, आप बोलते हैं खाएं तो पाप, और आज तो आपने ये बोल दिया कि शाकाहारी व्यक्ति को भी पाप लगता है, पेड़ पौधे खाने से भी पाप लगता है, और आपने तो ये बोल दिया कि अच्छे कर्म बुरे कर्म को कैंसिल नहीं करते। अरे आपने तो मतलब कुछ रास्ता ही नहीं छोड़ा, सीधी तरह बोलो ना यहां से कूद के मर जाऊं, जीवन खत्म, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ऐसा नहीं है। मानव जीवन एक प्लेटफॉर्म के समान है जो आपको सही दिशा में लेके जाएगा, जहां पे आप सही ट्रेन पकड़ सकते हैं, अकर्म की साइंस को जान सकते हैं, अकर्म का विज्ञान क्या है। जब एक मिलिट्री में एक व्यक्ति अपनी बंदूक से हजारों लोग को मार डालता है, कभी दो देश में युद्ध होता है हजारों लोग को मार डालता है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको पुरस्कार देती है, मेडल देती है। अरे वाह क्या बहादुरी का काम किया, वो शिवाजी महाराज को बोलते हैं बहादुरी है, बहादुर आदमी है, बहुत बढ़िया है ना, तो कोई बहादुरी का काम करे तो वाह बड़ा बहादुरी किया, क्या उसने मारा हत्या करी ना काफी लोगों की, है कि नहीं। वही व्यक्ति अगर वही बंदूक लेके छुट्टियों के टाइम पे अपने गांव में आता है और पूरे गांव वालों को मार डालता है, गवर्नमेंट क्या करेगी, सजा देगी। तो एक तरफ पुरस्कार एक तरफ सजा, वो बोलता है अरे बंदूक तो वही थी, काम तो वही किया, उधर मेडल दिया इधर कारागार में डाल दिया। ये अंतर है अकर्म में और कर्म में। पुण्य कर्म जो होता है वो शास्त्रों के अनुसार किया जाता है, लेकिन अपने इच्छा अनुसार फल की इच्छा रखते हुए किया जाता है। लेकिन जो अकर्म है, ये शब्द देख रहे हैं ना, अकर्म, अ मतलब जिसका फल नहीं मिलता, निष्पक्ष कार्य, निष्पक्ष मतलब कुछ उसमें अपना स्वार्थ नहीं है, वो भगवान की इच्छा के लिए किया जाता है। जैसे एक मिलिट्री में व्यक्ति वो अपने लिए नहीं मार रहा, वो देश के लिए, तो देश वाला बोलता है ठीक है मेडल। एक राजा अगर सेनापति राजा के लिए कुछ करता है तो राजा भुगतेगा, सेनापति कुछ नहीं करेगा, सेनापति सिर्फ उसका फल राजा को देगा। तो वो अपने देश के लिए कर रहा है। ऐसे ही जब जीवात्मा ये समझ जाती है, भगवान बोलते हैं ममई वामशो जीव लोके, 15वें अध्याय में गीता में 7वें श्लोक में भी लिखा है ममय वामशो, जीव मेरा अंश है और वो मेरी, उसका अस्तित्व क्या है, स्वभाव क्या है, मेरी सेवा करना, सेवा में लगाना। तो जब वो अपने अस्तित्व को समझ लेता है तो वो अपने बलबूते पे किसी चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरा सांस लेना, मेरा खाना, मेरा जीना, मेरा पूरा जीवन भगवान की सेवा के लिए समर्पण। जब वो भगवान की सेवा के लिए बोलता है, चलता है, खाता है, कुछ पाप नहीं लगता उसको। वही चलना जो पाप बन रहा था अभी वो अकर्म हो गया, वही खाना वो अकर्म हो गया, वही भोजन जब वो शाकाहारी भोजन खाता है, एक पौधा से फल तोड़ता है, तोड़ के खुद भोग करेगा तो पाप हो गया। जब वो अपने गांव में जाके लोगों को मारेगा तो पाप हो गया, एक मिलिट्री का आदमी। उसी प्रकार से वही भोजन, वही फल जब वो भगवान को अर्पण करता है और भगवान के दिए अनुसार उसका सेवन करता है, भोग नहीं करता, सेवा करता है, उसको ग्रहण करता है भगवान के प्रसाद को, तो पाप नहीं लगता। तो ये पूरा एक विज्ञान है कैसे एक एक कर्म को अकर्म में बदलें, किस प्रकार से इस जगत में भगवान के अंश के रूप में, जैसे माता जी बोल रही थी, भगवान का जो अंश है उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं किसी को रिप्रेजेंट करता हूं, किसी का प्रतिनिधि हूं, उसका हर एक व्यवहार भगवान के प्रेम को प्रदर्शित करता है, उसका हर एक व्यवहार दूसरों से कैसे वो व्यवहार करता है वो भगवान के प्रेम को प्रदर्शित करता है। निर्वैर सर्वभूतेषु, किसी से वैर नहीं करता, मैत्र कारुण एवच, मैत्र मित्रता, हर जीव से, अहम से मुक्त होकर हर जीव को अपने परिवार में ले लेता है। तो यहां वो उदाहरण दिए मदर टेरेसा का, क्यों अच्छा लगा उनको, क्योंकि वो सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज पूरे समाज के लिए क्या कर रही हैं। अरे भक्त तो समाज छोड़ो, हर जीव के लिए काम करता है। हर जीव का उदाहरण कैसे किया, उद्धार कैसे किया जाए, तो मैत्र कारुण एवच, अकर्म, वो अकर्म कैसे करें, गीता में भगवान लिखते हैं तस्मात योगी भव अर्जुन, तस्मात योगी भव अर्जुन, 6 अध्याय में 46वां श्लोक, हे अर्जुन इसलिए योद्धा मत बनो, योद्धा तो उसका एक फल हो गया, लेकिन योगी बनो, योगी अर्जुन को बोल रहे हैं। गीता का लक्ष्य युद्ध सिखाना नहीं है। लोग बोलते हैं गीता मतलब हिंसा सिखाया है, हिंसा नहीं सिखाया गीता में, सिखाया है अपना कर्तव्य कैसे करना, जो कि अर्जुन के लिए युद्ध करना था। एक हाउसवाइफ के लिए घर को संभालना, बच्चों को संभालना, पति को संभालना है, एक पति के लिए घर को संभालना, घर में धन राशि रखना, बच्चों को बड़ा करना, पत्नी को संभालना है, एक विद्यार्थी के लिए विद्या करना है, हर किसी के लिए वो कुछ कार्य निर्धारित किया गया है, लेकिन वो कार्य एक योगी बन के करें। अब ये नया टॉपिक हो गया, ये योग क्या चीज है, आप में से कितने लोग योग सीखते हैं, 1 2 3 हाथ खड़ा करिए, करिए 4 5 6 7 8, क्या योग सीखते हैं आप माता जी, अष्टांग योग क्या सिखाते हैं उसमें आपको, प्राणायाम, आसन, बढ़िया, मेडिटेशन, आप कौन सा योग सीखते हैं, वाह माता जी ने तो पूरा एग्जाम दे दिया, अष्ट परफेक्ट, बढ़िया, और पीछे कोई हाथ खड़ा किया था, वो भी बता दिया पूरा, उन्होंने तो पीएचडी कर दिया पीछे कोई बताए थे हाथ खड़ा किए थे, जो माता जी बोले ठीक है। तो अनेक प्रकार की धारणाएं हमने योग के बारे में सुनी है, योग है क्या, और अक्सर योग के बारे में जब हम सुनते हैं योग, टीवी में दिखाते हैं योगा, तो पहला चीज आती है स्वास्थ्य अच्छा। हा? तो जानना बहुत जरूरी है, ये योग है क्या? क्या योग आसन करना है, क्या प्राणायाम है, क्या समाधि है, क्या योग अच्छे शरीर के लिए है? हा? अब ये तो मॉडर्न प्रकार का योग हो गया। अच्छे शरीर के लिए है? हा? नहीं, वो बड़े खुशी से बोल रहे हैं योग अच्छे शरीर के लिए नहीं है, वो तो एक साइड बेनिफिट हो गया, वो मेन चीज नहीं है। तो क्या है योग? लंबी आयु के लिए है। क्या योग सिद्धि प्राप्ति के लिए है? लोग बड़े खुश होते हैं, अरे आज हम ऐसे साधु से मिले जो हवा में उड़ सकते हैं। तो दूसरा व्यक्ति बोला, अरे इसमें क्या, मैं तो रोज फ्लाइट पकड़ के दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से कलकत्ता, कलकत्ता से बैंगलोर, बैंगलोर से अमेरिका घूमता हूं। उसने 40 साल तपस्या करी हवा में उड़ने के लिए, मैं तो फ्लाइट में बैठ के रो जाता हूं, तपस्या करने की भी जरूरत नहीं है, क्या बड़ा काम कर दिया उड़ के। दूसरे व्यक्ति बोले, अरे हमारे गुरु तो पानी पे चल सकते हैं। तो प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो बोले उसमें क्या, मैं तुम्हें चवन्नी देता हूं, नाव वाले को तो वो चला देगा। ये बात है 100 साल पहले की। बोले चवन्नी देता हूं, नाव वाले को तो चला देगा, कौन सी बड़ी सिद्धि प्राप्त कर ली। तो योग सिद्धि के लिए भी नहीं है। लोग बोलते हैं प्राणायाम करेंगे तो लंबी आयु हो जाएगी, अरे वृक्ष भी तो लंबी आयु जीते हैं, कौन सी बड़ी चीज हो गई, आयु का इस्तेमाल कैसे किया। तो सिद्धि प्राप्त करना कोई बड़ी चीज नहीं होगी। सिद्धि अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं, अनिमा, लघिमा, प्राप्ति, ईशिता, काम वसायता, बहुत सारी हैं। आप यहां बैठे बैठे चंद्रमा से कुछ ला सकते हैं, आप किसी के दिल की बात जान सकते हैं। सोचो कितना, अगर आपको मालूम चले आज के जो वक्ता हैं वो आपके दिल की बात पढ़ सकते हैं, कोई आएगा ही नहीं लेक्चर में, घबरा जाएंगे। सोचिए अगर हम बोले हमको आपके मन में क्या चल रहा है, हर किसी के मन की बात मालूम है, अभी आप क्या क्या सोच रहे हैं बाजू वाले के बारे में, वक्ता के बारे में, परिवार के बारे में, तो घबरा जाएगा आदमी। किसी को वो सिद्धि भी होती है, तो हम लोग बड़े आकर्षित हो जाते हैं, अरे ये सिद्धि। लेकिन योग का लक्षण तो सिद्धि प्राप्ति है ही नहीं, फिर क्या है? नहीं कठोर जीवन। कुछ लोग को तपस्या करने में बड़ा आनंद आता है, कठोर जीवन। कितने लोग जीना चाहेंगे ऐसा, हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, सब घबरा गए, चलो शुक्र है ऐसा तो कोई नहीं है यहाँ पे। हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं। जैसे कि माता जी ने बोला, योग का मतलब है जोड़ना, युज। योग शब्द जो है युज धातु से आया है, युज मतलब जोड़ना। ये शादी का जोड़ नहीं है, ये बिजनेस का जोड़ नहीं है, ये दोस्ती का भी जोड़ नहीं है, ये किसका जोड़ है? आत्मा का परमात्मा से। तो एक बात तो क्लियर होती है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा कभी परमात्मा नहीं बन सकती, जैसे कुछ लोग प्रश्न उठा रहे थे कल। आत्मा परमात्मा का अंश है, आत्मा का परमात्मा की सेवा में लगाना, उसे बोलते हैं योग। अभी आप बताइए इसमें से कितने लोग यहां पे बिजनेस में है, हाथ खड़ा कीजिए, खड़ा कीजिए अच्छे से, हाथ खड़ा, कितने लोग हैं? बढ़िया। अगर आपको एक बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, नया बिजनेस शुरू करना है, नया व्यापार शुरू करना है, तो उस व्यापार में आप क्या क्या देखेंगे, क्या क्या चीज ध्यान रखेंगे, बताइए। क्या देखेंगे फाइनेंस के बारे में? इन्वेस्टमेंट, मुझे कितना पैसा लगाना पड़ेगा उसमें, पहली चीज कितना पैसा लगाना पड़ेगा। उसके बाद ये बोल रहे हैं स्कोप ऑफ ग्रोथ, कितनी बढ़ोतरी होगी उसमें, और बताइए प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना मिलेगा। चलो मैंने 10 लाख लगाया तो 20 लाख मिलना चाहिए, जो भी है, एक उदाहरण दे रहा हूं। और क्या? हाँ, गुडविल, कैसे, कुछ समझाइए इसको, कैसे सब लोग का सपोर्ट मिलना चाहिए, दैट्स व्हाट यू वांट टू से, सबका सपोर्ट, सबका साथ मिलना चाहिए। हाँ, नाम होना चाहिए, सब लोग मानने चाहिए उस बिजनेस को, अरे ऐसा बिजनेस शुरू किया वहां पर चले ही नहीं, अभी आप इस्कॉन मंदिर के सामने मांस की दुकान लगा दी, कौन खाएगा? कोई सेंस है क्या उसका? हाँ, कोई मतलब नहीं है उसके अंदर। लेकिन जपमाला या दूध की दुकान लगा चल पड़ेगी वो, तो है कि नहीं? सबको दूध चाहिए, तो उसका कोई वैल्यू होना चाहिए। और क्या? हाँ, क्या होना चाहिए? प्रोफेशनलिज्म मतलब एक्सपर्टीज, ऐसा बोल रहे हैं आप? योग्यता होनी चाहिए बिजनेस चलाने की। बहुत बढ़िया। अरे आप ऐसा बिजनेस शुरू किया जो कर ही नहीं सकते, है कि नहीं? वो योग्यता भी तो होनी चाहिए। सब लोग बिजनेस नहीं कर सकते, व्यापार सबके हाथ के काम नहीं है, हा? सबके हाथ का काम नहीं है। बहुत झूठ बोलना पड़ता है, बहुत चीटिंग करना पड़ता है, सब लोग नहीं कर सकते। अगर एक ब्राह्मण स्वभाव के व्यक्ति को व्यापार में बिठा दिया तो 100% वो व्यापार फ्लॉप हो जाएगा, हा? वो तो सत्य बोल देगा। तो हाँ, एप्टीट्यूड यानी योग्यता, वो इंक्लिनेशन होना चाहिए। तो बहुत सारी क्वालिफिकेशन देखते हैं, उसी प्रकार से योग भी कई प्रकार के हैं, जैसे बिजनेस कई प्रकार के हैं। कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कई प्रकार के योग हैं। कर्म योग यानी इंद्रियों को भगवान की सेवा में जोड़ना। देखिए हम पहले ही चर्चा की है योग मतलब जोड़ना, तो अभी हमारी हर परिभाषा जोड़ने से होगी। जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में जोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं कर्म योग। जब बुद्धि और मन को भगवान की सेवा में जोड़ते हैं तो ध्यान योग और ज्ञान योग। और जब आत्मा को, आत्मा मतलब आत्मा जुड़ गई तो सब कुछ जुड़ गया। जब आत्मा को भगवान की सेवा में जोड़ते हैं तो बोलते हैं भक्ति योग। लेकिन इसके बारे में डिटेल मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, कभी बताऊंगा थर्सडे को, जो लोग थर्सडे को आएंगे, तो इसलिए आपको थर्सडे को आना पड़ेगा। तो तभी हम गीता में डिस्कस करेंगे कि भगवान ने अर्जुन के सामने हर प्रकार के योग खोल के रख दिए, और अर्जुन बोले ज्ञान योग, ना रे ना, ध्यान योग, अरे बाबा नहीं 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 नहीं। अर्जुन को समझाने लगे कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है। तो अर्जुन भी फिर बिजनेस एनालिसिस में लग गए। वो कैसे करते हैं एनालिसिस? व्हाट इज द वर्ड यू यूज? बिजनेस का प्रॉफिट एनालिसिस कैसे करते हैं? एनालिसिस किया कि अरे ये बिजनेस कौन सा बढ़िया चलेगा। तो फिर उन्होंने बोला सर्वश्रेष्ठ क्या है कृष्ण, ये तो बहुत मुश्किल है। चंचलम ही मन कृष्ण, मन बहुत चंचल है, ऐसा कुछ बताओ जो घर बैठे बैठे आराम से हो। अरे आप बोलेंगे घर बैठे बैठे आराम से हो, अर्जुन बोले मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय के रूप में आराम से कर सकूं, ऐसा कुछ बताइए। हाँ, तो बताए सर्वश्रेष्ठ बिजनेस, सर्वश्रेष्ठ योग वो है जो हर कोई व्यक्ति, कृष्ण का मत, कृष्ण बोले योगी नाम अपि सर्वेशां मद्गतेनंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। अरे ऐसा योग जिसमें आप पूर्ण तरह से मुझ में समय युक्त तमो मता, श्रद्धावान भजते यो माम, जो पूर्ण श्रद्धा से मेरा भजन करता है, मेरा भक्ति भाव से सेवा करता है, वो सर्वोत्तम योग है। ऐसा योग जिसकी, अभी आप बताइए, जिसे कोई बोला व्यापार में प्रगति बढ़िया होनी चाहिए, तो ऐसा योग जिसमें बड़ी फास्ट गति से, हम पहले दिन चर्चा किए थे दिशाहीन गति, गति तो है लेकिन दिशा बराबर नहीं है। अभी हम बता रहे हैं दिशा सही है और गति भी बराबर है। ऐसा योग चाहिए जिसमें एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे तो थक जाएंगे, ऐसा कुछ लिफ्ट लगाओ फर्स्ट क्लास, दो मिनट में 100 माले चढ़ के चले जाएं। समय बहुत कम रह गया है। यहां पे कोई 70 साल का व्यक्ति है? कोई 60 से 70 साल का होंगे जरूर, हाँ कुछ लोग हैं। समय बहुत कम रह गया है। कोई 50 से 60 का है? हाँ। कोई 40 का, 30-40 का, 30 से 40 बहुत है। कोई 20 से 30 बहुत है। तो अगर उम्मीद की जाए कि सब लोग की उम्र होगी 80-90 साल, तो जो 70 वाला है, बहुत कम समय रह गया है, उसको तो फास्टेस्ट लिफ्ट चाहिए, और ऐसी इतनी फास्ट भी ना चले कि हार्ट अटैक हो जाए, है कि नहीं? तो ऐसा लिफ्ट चलना चाहिए कि संभाल सको अपने आप को। कभी कभी जो आदमी उम्र बढ़ जाती है उसको अगर आप फास्ट गाड़ी में बिठाओगे तो घबरा जाता है, वो ड्राइवर के पास में नहीं बैठ सकता, या तो उसकी आंखें बंद कर दो, नहीं तो हर 2 मिनट में कमेंट आएगा धीरे चलाओ धीरे चलाओ धीरे चलाओ, वो घबरा घबरा के ड्राइवर एक्सीडेंट कर डालेगा, नहीं भी होना होगा। तो ऐसी लिफ्ट में बिठाओ जो कम समय में इतना फास्ट चलाओ कि हार्ट अटैक भी ना हो। ऐसी कुछ योग साधना बताओ जो घर बैठे बैठे पारिवारिक जीवन में बच्चों के साथ खेलते कूदते भगवान की प्राप्ति हो जाए, ऐसा कुछ बताओ। अरे अर्जुन ने भी तो संन्यास नहीं लिया था, अरे अर्जुन भी तो युद्ध भूमि पर युद्ध कर रहे थे, तो हम भी चर्च गेट टू विरार घूमते घूमते भगवान की प्राप्ति हो जाए, हमको भी अपना नौकरी ना छोड़ना पड़े, संन्यास ना लेना पड़े, हम भी 3 वक्त का रोटी खाते खाते भगवान के धाम पहुंच जाए। वड़ा पाव चाहिए तो वड़ा पाव खाओ, समोसा चाहिए समोसा खाओ, गुलाब जामुन चाहिए गुलाब जामुन खाओ, पाव भाजी चाहिए पाव भाजी खाओ, पिज्जा खाओ बर्गर खाओ सैंडविच खाओ और भगवत धाम पहुंच जाए। ऐसा कुछ योग बताओ, ऐसा मत बताओ कि सन्यासी बन जाए या जंगल में चले जाए तपस्या करें बहुत कठिन हो जाएगा। ऐसा कुछ योग बताओ, पुरुष हैं स्त्री हैं वरिष्ठ हैं बच्चे हैं जवान हैं सब कर सके, लेकिन कॉम्प्रोमाइज मत करना। बिजनेस ऐसा बताओ कि पूरा प्रॉफिट मिले, लेकिन अगर योग्यता नहीं है तो भी मिल जाए। देखिए हर इंसान चीटिंग करने की कोशिश करता है, बिना कुछ इन्वेस्ट किए फायदा चाहिए, तो भगवान ने भी बोला ठीक है चलो कुछ तो करो। ऐसा क्या करें ऐसा क्या करें, समय नहीं है, अभी समय नहीं है, बहुत कम समय रह गया है, 8:50 हो गया है, सफर बहुत लंबा है, तो मेरे को भी कट शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग कभी आने वाले हैं, थर्सडे को आने वाले हैं, हम लोग थर्सडे को डिस्कस करेंगे डिटेल में, जो लोग आएंगे, समय बहुत कम है, 5 दिन में सब बातें नहीं डिस्कस होती। कर्म बहुत गुह्य साइंस है, बहुत गुह्य विज्ञान है, भगवान की लीला बहुत गुह्य है, गीता तो बहुत ही गुह्य है, 4 महीने में डिस्कस नहीं होती, जीवन देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम 4 महीने में करेंगे, तो समय बहुत कम है। फिर क्या करूं, मैं भी सोच रहा हूं क्या करूं, बहुत सारा स्लाइड्स है क्या करूं, लेकिन करेंगे, बहुत आसान है, भगवान ने बड़ी शक्ति दी है। पंच स्तरीय समाधान, केवल 5 स्टेप रह गए हैं, बहुत खुशी की बात है, केवल 5 ही चीजें बताने के लिए रह गई हैं, केवल 5। अभी आप बताइए, अगर कोई बीमार है, किसी को बड़ी बीमारी हो गई है, वो बीमारी को ठीक करने के लिए 5 कौन से स्टेप्स चाहिए? जो इस कोर्स में आया है पहले कृपया मत बोलिए, जो नहीं आए वही बोलिए। कि किसी को बीमारी अगर हो गई है और 5 स्टेप्स में बताइए वो बीमारी ठीक करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, 5 स्टेप्स क्या लेंगे आप बताइए? होप, ठीक है, होप, होप बाद में डिस्कस, सेकंड आएगा, पहले क्या? डायग्नोसिस। अरे पहले तो व्यक्ति को स्वीकार करना है कि मैं बीमार हूं। आजकल तो ऐसी प्रॉब्लम है, लोग स्वीकार नहीं करते कि वो बीमार है, खासतौर पर मानसिक बीमारी हो जाए तो उसको स्वीकार तो करे पहले बीमार है, फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, तो स्वीकार करे और स्वीकार करने के बाद डायग्नोस भी करे ना। ओके डायग्नोस, अभी वो माता जी बोले कि होप, आशा। अभी आशा कैसी आएगी आपको, आशा ठीक होने की? ठीक है, विल पावर, सामना, और कैसे आशा आएगी? ट्रीटमेंट करेंगे ना, विल पावर तो ठीक है लेकिन ट्रीटमेंट लेंगे तो ही तो आशा आएगी, तो ट्रीटमेंट कहां पे लेंगे? डॉक्टर कहां मिलते हैं? हाँ, तो दूसरा चीज है हॉस्पिटल जाएंगे, सही हॉस्पिटल जहां पे स्पिरिचुअल केयर डिपार्टमेंट भी हो, है कि नहीं? सही हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल में आ गए, अरे इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, उधर तो फिजिशियन भी बैठे हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन भी बैठे हैं, जनरल सर्जन भी बैठे हैं, हार्ट के डॉक्टर भी बैठे हैं, और जिसका नाम लो सब हैं, आईसीयू भी है, कहां पे जाएंगे? तो तीसरी चीज क्या है? राइट डॉक्टर, मालूम होना चाहिए किसके पास जाओ, मेरी बीमारी को कौन ठीक करेगा, आयुर्वेद पे जाऊं, होम्योपैथ पे जाऊं, एलोपैथी पे जाऊं, कहां पे जाऊं। तो ठीक है, पहला हो गया डायग्नोसिस, दूसरा हो गया सही हॉस्पिटल, फिर तीसरा हो गया सही चिकित्सक। अभी क्या, चिकित्सक से बातचीत हो गई, अभी क्या करेंगे बताइए, इलाज, मेडिसिन। और एक और चीज लास्ट, मेडिसिन के साथ साथ डॉक्टर क्या बताएगा, परहेज, रिस्ट्रिक्शंस, प्रतिकूल चीजों का निषेध और सही दवा का नियमित सेवन। तो ये हो गई आपकी पंच स्तरीय समाधान। पहला, रोग को समझें, स्वीकार करें, घर मत पड़े रहें, हर थर्सडे को आना जरूरी है घर पड़े रहेंगे तो कैसे चलेगी गाड़ी। स्वीकार करें कि लक्षण क्या है, बीमार हूं, तो स्वीकार तो कर लिया। अरे ये स्लाइड कितनी बार आया रहेगा बताइए। मान गए कि गुलाब जामुन में क्या है, कंकर है, खीर में क्या है, रेत है। सब लोग मानते हैं कि नहीं मानते, किसी को लगता है कि ये जगत बहुत मीठा है, अभी भी सोच लीजिए, हाथ खड़ा कर लीजिए, बाद में मत बोलना, नहीं तो फिर थर्सडे को नहीं आएंगे आप जिसको भी लगता है कंकर है और रेत है वो मानेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। और क्या है, आध्यात्मिक मन की बीमारी, आधि भौतिक जीव के द्वारा दी गई बीमारी, आधि दैविक। कभी भी घर पे मच्छर काटे तो याद करना थर्सडे को जाना है तो, पंच स्तरीय समाधान। दूसरी चीज क्या है, सही अस्पताल में जाएं। अस्पताल क्या है, ठीक है, भक्ति वेदांता हॉस्पिटल एक शरीर को ठीक करता है, लेकिन एक दूसरी चीज है मंदिर। मन के लिए, आत्मा के लिए कौन सा अस्पताल है, मंदिर। लेकिन वो मंदिर, मंदिर तो है जहां पे हफ्ते में एक बार आते हैं या दो बार आते हैं, थर्सडे को आते हैं और संडे को भी आएंगे मंदिर में आप, लेकिन साथ ही साथ सोमवार को क्या करेंगे आप, ट्यूसडे को क्या करेंगे, वेडनेसडे को क्या करेंगे, फ्राइडे और सैटरडे को क्या करेंगे, माता जी बोल रही है रिवीजन करेंगे, वो रिवीजन कहां करेंगे, मंदिर तो मीरा रोड एक ही जगह पे है, बाकी जगह पे क्या करेंगे, घर में मंदिर खोलेंगे, हर घर में मंदिर की स्थापना करेंगे। अभी कोई बोलेगा कि घर पे मंदिर खोलने से या मंदिर आने से फायदा क्या होता है, अक्सर लोग ये प्रश्न पूछते हैं, अरे भगवान तो सब जगह है, मंदिर में क्यों जाएं। आपने कभी सुना ये प्रश्न, थोड़ी ना मंदिर जाके भगवान मिलने वाले हैं, कितने लोगों ने यह प्रश्न सुना है, अक्सर लोग पूछते हैं मंदिर क्यों जाएं। कोई उदाहरण देना चाहेगा इसका, कोई उत्तर देना चाहेगा इसका, क्यों जाए मंदिर, समय कम है मैं देता हूं उत्तर घर में मंदिर क्यों बनाए, जब भगवान के विग्रह सामने आते हैं या मंदिर में या घर पे। अभी देखिए आप सब यहां बैठे हैं, सबका अटेंशन एक चीज पे फोकस है, ये बात अलग है, बीच में बच्चा आ जाएगा बोलेगा मम्मी भूख लगी है अभी तो नहीं आया, लेकिन सब लोग फोकस हैं। देखो दिया भी देख रही है, ध्यान से देख रही है कि नहीं। जब सब लोग एक जगह पे फोकस हो जाते हैं तो एकता बढ़ जाती है। अगर एक तालाब है और तालाब में हर कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई इधर पत्थर फेंक रहा है, कोई उधर पत्थर फेंक रहा है, कोई उधर पत्थर फेंक रहा है, तो क्या होगा, जो पत्थर फेंकने से क्या बोलते हैं उसको, रिपल्स बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, जो हलचल हो जाएगी, कुछ ज्यादा ही हलचल हो जाएगी, आपस में सब टकराएंगे, किसी का पत्थर यहां है तो यहां पे जो गोल बना, यहां पे गोल बना, रिपल्स आपस में टकराएंगे। आजकल परिवारों में यही हो रहा है, पति देव बोलते हैं हमारी ये इच्छा है, पत्नी जी बोलती हैं हमारी ये इच्छा है, माता बोलती हैं हमारी ये इच्छा है, पिता बोलते हैं ये इच्छा है, बच्चे बोलते हैं हमारी कुछ और ही इच्छा है, पांच छह सात आठ जितने घर पे लोग हैं सब पत्थर अलग जगह पे फेंक रहे हैं, क्योंकि सब लोग के जीवन का उद्देश्य एक नहीं है। वही अगर सब लोग पत्थर एक जगह पे फेंके तो क्या होगा? कितनी शांत हलचल है, हलचल है, कितनी कितना प्रेममय हलचल है, एक सुंदर वातावरण क्रिएट हो गया। कथम गानम नाट्यम गमनमपि वंसी प्रिय सखी, अभी हम चर्चा किए, वैकुंठ धाम ऐसा धाम है जहां कथा, भगवान के नाम की कथा, जब बोलता है तो लगता है गाता है। आजकल लोग जब घर में बोलते हैं तो ऐसे लगता है झगड़ रहे हैं, गाते नहीं है वो, झगड़ते हैं। अरे इतना ऊंचा बोलते हैं फिर भी दूसरे का हृदय नहीं सुन सकता, मतलब सोचिए अगर कोई चिल्ला के बोलेगा फिर तो सामने वाले को सुन लेना चाहिए वो क्या बोलना चाह रहा है। अरे वो जितना चिल्लाता है उतना उसको नहीं समझता, तो वाणी तेज हो गई है, हृदय दूर हो गए हैं। अरे हृदय इतने दूर है कि लाउड स्पीकर लेके भी चिल्लाओगे तो भी नहीं समझेगा। लेकिन जब भगवान का मंदिर आ जाता है तो क्या होता है मालूम है? कथा गानम, चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, हर व्यक्ति गाता है, हर व्यक्ति नाचता हुआ दिखता है, हर व्यक्ति आनंद में दिखता है। उसे बोलते हैं वैकुंठ, जहां पे चिंता नहीं होती। लेकिन आप बोले भगवान की मूर्ति की जगह कोई और मूर्ति रख दो वो भी चलेगा, चलो शाहरुख खान की ही मूर्ति रख देते हैं, सचिन तेंदुलकर की ही मूर्ति रख देते हैं, क्या हो गया प्रभु जी? तो किसी की भी मूर्ति रख दो। लेकिन हम ऑलरेडी इस पे चर्चा कर चुके हैं कि ओनली वन हीरो, एक ही हीरो है, हीरो नंबर वन एक ही है जो संपूर्ण सौंदर्य का मालिक है, एक ही है जो संपूर्ण ऐश्वर्य का मालिक है, एक ही है जो संपूर्ण ज्ञान का मालिक है, एक ही है जो सबके दिल का हीरो बनने का लायक है, वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। अगर इनको सचिन तेंदुलकर पसंद है तो उनको मुकेश अंबानी, किधर गए मुकेश अंबानी वाले, हाँ वो पीछे बैठे हैं, उनको मुकेश अंबानी पसंद है, हाँ? और किसी को मदर टेरेसा पसंद है। लेकिन ऐसा कौन है जिसके पास छह के छह ऐश्वर्य पूर्ण रूप से हो? वो तो श्री कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम, जिनके पास षड ऐश्वर्य पूर्ण, वही सबके हृदय को आकर्षित कर सकते हैं, केवल इंसान के नहीं, मानव के नहीं, हर जीव के हृदय को आकर्षित कर सकते हैं, तब ऐसी शांति मिलेगी। इसीलिए हर घर को मंदिर बनाना है, अस्पताल को घर लेके आना है, किसके लिए? सोमवार मंगलवार बुध गुरुवार छोड़ के और संडे छोड़ के, तब भगवान को एकत्र मिलके भक्ति करनी है, फिर भगवान को केंद्र बनाना है। अभी तीसरा क्या था? अब सही अस्पताल में पहुंच गए, तीसरा क्या है? सही डॉक्टर, सही चिकित्सक की शरण ले। अभी ये कलयुग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। माता जी तो बड़ी खुश हो गई, ये पॉइंट आया, कब से वो इसकी इंतजार कर रहे थे कि मुझे गुरु कब मिलेगा। ऐसा होना चाहिए मानव जीवन, गुरु के लिए ऐसी ऐसी भूख है कि गुरु की शरण कब मिलेगी। तो सही चिकित्सक की शरण लें, सही चिकित्सक हॉस्पिटल में स्टेथोस्कोप लेके बैठा है, लेकिन अध्यात्म में सही चिकित्सक कौन है? सिद्ध योगी पुरुष जो सिद्धियां दिखा सकता है, जादू कर सकता है, या बड़ी दाढ़ी वाला, या जिसके बहुत सारे शिष्य हो, जिसको लाखों लोग मानते हो, जिसका टीवी पे प्रवचन आता हो, जिसके पास बहुत धन हो, या जिसके शरीर से बहुत तेज निकलता हो, जो हमारी बीमारी क्षण में ठीक कर देता हो, क्या वो गुरु है? कौन है गुरु? ये भी डिटेल टॉपिक है, कब डिस्कस करेंगे हम? तो गुरुवार को, लेकिन अभी हम जस्ट टच करेंगे। सही चिकित्सक कौन है? ये भारी लक्षण नहीं है सही चिकित्सक के, जिसके बहुत बड़े बड़े मंदिर हो, जिसकी पूरी विश्व में संस्था चलती हो। आजकल लोग बोलते हैं अरे हमारे गुरु तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो क्या हो गया? विश्व में तो बिल गेट्स भी प्रसिद्ध है, तो गुरु मानेंगे क्या उसको? बोलो, आपके बिल गेट्स हीरो हैं, अच्छी बात है, लेकिन अध्यात्म में गुरु नहीं है वो, तो विश्व में प्रसिद्ध होना कोई बड़ी बात नहीं। हो सकता है सच्चे गुरु को कोई जानता भी ना हो इस जगत में। तो सही चिकित्सक कौन है? गुरु के लक्षण क्या है? पहला, एक एक करके पढ़ेंगे आप पढ़िए। भगवान का भक्त होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे गुरु अपने आप को भगवान बोलते हैं, और अगर गुरु भगवान नहीं बोलते तो उनके चेले उनको भगवान बना देते हैं। आजकल बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जहां पे लोग बोलते हैं अरे हमारे गुरु तो भगवान हुए, लेकिन हम परसों उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। किसी को भगवान बोलना हो तो उसके कुछ तरीके हैं, उसका नाम शास्त्र में होना चाहिए, विराट रूप दिखाने की शक्ति होनी चाहिए, सौंदर्य होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बुढ़ापा आ गया, ऐसा नहीं कि घुटने और पीठ में दर्द पकड़ ली, ऐसा नहीं कि हर साल नया ऑपरेशन हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, अरे ये कैसे भगवान हो गए। सौंदर्य होना चाहिए, बल होना चाहिए। बल वो नहीं जो जिम में जाके बॉडी बिल्डिंग करके बनाया हो। एक साल की उम्र में पूतना त्रिणावर्त शक्तासुर ऐसे ऐसे राक्षसों को मार डाला, ऐसे होते हैं भगवान। तो भगवान का भक्त वो खुद भगवान नहीं है, भगवान की भक्ति सिखाते हैं, भगवान की सेवा सिखाते हैं। बहुत ध्यान से इसको समझने वाली बात है। आजकल बहुत सारे लोग पुस्तक बांटते हैं, बोलते हैं हमारे रास्ते पे आ जाओ आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, संकट चले जाएंगे। लेकिन यहां पे हम झूठ नहीं बोल रहे कि संकट चले जाएंगे, अरे जब तक कोयले की खान में है संकट रहेंगे। ये एक धोखा है कि संकट चले जाएंगे, संकट नहीं जाने वाले। कुंती महारानी बेचारी भक्ति करने के बाद ही संकट में आई थी, इतनी भक्ति करी और फिर बोलती है और संकट दे दो। द्रौपदी कैसा अपमान सहना पड़ा उसको, क्या मालूम भगवान कैसा हमको कैसा आदान प्रदान करेंगे। तो हमें भक्ति सीखना है और कुछ नहीं, और क्या, परंपरा में आना चाहिए। पढ़िए आप क्या लिखा है, परंपरा में आना चाहिए। अभी हॉस्पिटल में आए हैं, डॉक्टर है, डॉक्टर के पास कभी जाएंगे अगर आप किसी किसी हॉस्पिटल में या प्राइवेट क्लिनिक पे, तो बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लगे रहते हैं, ये कॉलेज से ये डिग्री किया, ये कॉलेज से ये डिग्री किया, ये कॉलेज से ये डिग्री किया, हाँ इनाम मिला, इतने ऑपरेशन किए, कुछ रिकॉर्ड है कि नहीं। आजकल अपने आप गुरु बन बैठे, गुरु बन बैठे, टीवी पे भी आ रहे हैं, किसी ने उसको टीवी पे फेमस कर दिया, गुरु बना दिया, धन भी एकत्रित हो रहा है, आशीर्वाद बाबा बने हुए हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है, इस पर बहुत डिटेल चर्चा कर सकते हैं। चार परंपराएं हैं, सिर्फ उन चार परंपराओं में आए हुए गुरु को गुरु मान सकते हैं। आपको आना पड़ेगा कभी थर्सडे को। परंपरा बहुत बड़ा टॉपिक है, ये सब चर्चा नहीं कर सकते। फिर क्या, आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, शारीरिक ज्ञान नहीं देंगे, मानसिक ज्ञान नहीं देंगे। वो केवल फॉल्स पॉजिटिव थिंकिंग नहीं सिखा रहे, अरे सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे गुरु बोलते हैं कभी सब ठीक होगा ही नहीं, ये जगत ही ऐसा है। भक्ति करो, भगवान को प्रसन्न करो, तो सभी दुखों से परे हो जाओगे, दुख में रहते हुए दुखों से परे हो जाओगे, इस जगत में रहते रहते मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। गुरु की पहचान उनके आध्यात्मिक ज्ञान से होती है। धन जन और सौंदर्य के पीछे नहीं जाते कि मुझे और ज्यादा फॉलोअर्स चाहिए, धन चाहिए, सौंदर्य चाहिए। शास्त्रों का सही ज्ञान होना चाहिए। देखिए सभी चीज होनी चाहिए, ऐसे कुछ कुछ लोग टीवी देखते हैं और बोलते हैं अरे वो गुरुजी तो क्या शास्त्र बोलते हैं, हर लाइन में एक संस्कृत का श्लोक डाल देते हैं। हम भावुकता से नहीं मानते किसी को, कोई संस्कृत श्लोक बोलते जा रहा है तो मतलब गुरु हो गया। सब लक्षण होने चाहिए, सभी के सब लक्षण। आचरण से प्रचार होता है, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा नहीं बोलते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, सुना है कि नहीं सुना आपने, ऐसा नहीं, आचरण भी होना चाहिए। इंद्रियों पे संयम होना चाहिए, ऐसा व्यक्ति पूरे विश्व को अपना शिष्य बना सकता है, शास्त्र में लिखा है। इंद्रियों पे संयम होना चाहिए, कृष्ण की सेवा में सदैव लगे रहें। एक साधु के सभी गुण होते हैं, और सबसे बड़ा टेस्ट क्या है गुरु का, सबसे बड़ा टेस्ट क्या है, गुरु साधु और शास्त्र आपस में मेलजोल होना चाहिए। अगर अभी इसको समझने का तरीका क्या है, अगर आपको मैं एक किताब देता हूं, आप पढ़ते हैं, इस समय अध्यात्म पे इतनी किताबें मिलती हैं कि अगर आप किताब पढ़ेंगे आपको लगेगा अरे ये तो बिल्कुल सही लिखा है, इसमें बिल्कुल सही लिखा है, हर किताब सही लगेगी आपको, लगेगा चलो ये करते हैं वो भी करते हैं वो भी करते हैं। लेकिन उस शास्त्र को जैसे यहां पे दिखाया शास्त्र, वो शास्त्र की वाणी साधु से मैच होती है कि नहीं? जो इतने साधु हुए हैं पहले के समय में, भागवत में ध्रुव महाराज का वर्णन किया है, प्रहलाद महाराज का वर्णन किया है, कुंती देवी का वर्णन किया है, द्रौपदी का वर्णन किया है, ऐसे भक्त हुए, उनकी प्रार्थनाएं इस पुस्तक से मैच होती हैं कि नहीं होती? अरे ऐसे शास्त्र मिलते हैं आजकल, बोलते हैं आप ऐसा करो आप भगवान बन जाएंगे। आज तक कौन से भक्त ने बोला है कि हम भगवान बन जाएंगे? तो साधु से मैच होनी चाहिए। अगर कोई बोलता है मैं गुरु हूं, तो वो गुरु के शब्द जितने भी संत हुए, संत तुकाराम, ऐसे ऐसे भक्तों से मैच होने चाहिए। तो आपस में जब मेल जोल रहेगा तो हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, हां ये शास्त्र सही है, साधु सही है, गुरु सही है। तो इसी प्रकार से ये गीता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, बोलते हैं कि ये गीता लिखने की योग्यता मुझमें नहीं है। किसी ने बोला प्रभुपाद जी को, अरे आपने जो गीता में लिखा है, आपके गीता का जो तात्पर्य है वो रामानुजाचार्य के तात्पर्य जैसा ही है। प्रभुपाद जी बोले, गुरु वही है जिसके शब्द बाकी जितने भी सच्चे साधु रहे हैं उनके शब्दों से मैच होते हैं, तुलना बराबर होती है। तो ऐसी गीता, इसलिए बोलते हैं यथारूप, एज इट इज, जैसा कृष्ण ने बोला वैसा ही दिया, ये गुरु के लक्षण हैं। चौथा क्या है? प्रतिकूल चीजों का निषेध। जो चीज अनुकूल नहीं है उसको जीवन में दूर रखना। प्रभुपाद जी ने शास्त्र ग्रंथों के अनुसार हमको चार चीजें बताई हैं। पहला, मांसाहार निषेध। इससे पहले एक चीज बताऊंगा आपको मैं। लोग पूछते हैं गीता में कहां लिखा है कि मांस नहीं खाना चाहिए, एक श्लोक ढूंढ के बताओ, किसी को मालूम है? गीता में कहां लिखा है कि प्याज और लहसुन, कांदा और लहसुन नहीं खाना चाहिए? कहीं लिखा है? कोई एक श्लोक ढूंढ के बताइए गीता में जहां पे लिखा है कांदा लहसुन नहीं खाना चाहिए और आप लोग बोलते हैं कांदा लहसुन नहीं खाना चाहिए। गीता में कहां लिखा है मांस नहीं खाना चाहिए? कोई एक श्लोक बताइए जहां लिखा है मांस नहीं खाना चाहिए। दूसरा, नशा पान निषेध। गीता में एक श्लोक ढूंढ के बताओ जहां पे लिखा है कि मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। लोग बोलते हैं ऐसा, आप ही की गीता ना, यथारूप, आप यथारूप पालन करते हैं ना, तो यथारूप पालन करिए, कहां लिखा है उसमें? तो अगर कोई सोच रहा था मैं बोलूंगा गीता के आधार पे, तो मैं ही बोल रहा हूं गीता में नहीं लिखा। गीता में स्पष्ट नहीं लिखा मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अरे बाइबल में भी लिखा है दाउ शैल नॉट किल, मारना नहीं चाहिए। और क्या? तीसरी चीज क्या निषेध है? द्रुत क्रीड़ा निषेध। द्रुत क्रीड़ा निषेध क्या? नो गैम्बलिंग, जुआ नहीं खेलना चाहिए। और चौथा, अवैध संबंध निषेध। नो इलिसिट सेक्स, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग। कहां लिखा है ये? तो ये जो चार हैं ये सब कहां दिया है? शास्त्रों में बताया गया है कि धर्म के चार, फोर पिलर्स हैं। क्या बोलेंगे पिलर को हिंदी में? स्तंभ, खंबे, स्तंभ। जैसे एक बिल्डिंग है, खंभों पे खड़ी है, स्तंभ पे खड़ी है, फाउंडेशन है। धर्म के भी चार स्तंभ हैं जिन पे धर्म खड़ा है। उसमें से पहला स्तंभ है दया, मर्सी। मर्सी यानी दया। जब हम मांस खाते हैं या किसी जीव को मारते हैं, जीव पे कुछ प्रहार करते हैं, तो वो दया को तोड़ते हैं। एक बिल्डिंग को अगर खड़ा करना है तो उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। अगर उसका पिलर हिल जाएगा तो बिल्डिंग गिर जाएगी। उसी प्रकार से अगर दया का खंभा हिल जाएगा तो बिल्डिंग गिर जाएगी। भगवान से अपना संबंध नहीं स्थापित कर सकते। भगवान बोलेंगे अरे किसी जीव के प्रति प्रेम नहीं, मुझसे प्रेम करने चले हो। अगर एक पिता से बोलो मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, बच्चा बोले मां से बोले मुझे बड़ा प्रेम है, और भाई को मारे, मां बोलेगी क्या प्रेम है, पहले भाई को प्रेम करो, पहले अपने भाई बहन को प्रेम करो, फिर बोलेंगे मेरे से प्रेम है। तो अगर दूसरे जीव को हिंसा कर रहे हैं और बोल रहे हैं भगवान से ओ हे कृष्णा मुझे आपसे आपकी सेवा करनी है, अरे मेरी सेवा से पहले दूसरे जीव की सेवा करो, दया। दूसरा खंभा है, दूसरा स्तंभ है दया के बाद तप, तपस्या, ऑस्टेरिटी। मर्सी, ऑस्टेरिटी, दया, तपस्या। जब इंसान नशा करता है तो तपस्या का खंभा तोड़ता है। अच्छा अभी कोई बोलेगा ठीक है मैं मांस खा रहा हूं तो किसी दूसरे जीव को प्रहार कर रहा हूं। अरे जब नशा कर रहा हूं तो तुम्हारा तो कुछ नहीं गया, मैं ही मदिरा का सेवन कर रहा हूं ना। आप सोचिए, कोई बोलेगा कि अरे जब मांस खा रहा हूं तो किसी दूसरे जीव पे प्रहार कर रहा हूं, जब नशा किया तो खुद ही नशे का मदिरा का सेवन किया ना, उसमें क्या नुकसान हुआ, कुछ नुकसान हुआ क्या बताइए? कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी दूसरे को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मानव जीवन का गलत इस्तेमाल किया। मानव जीवन तपस्या के लिए है तो तपस्या का स्तंभ टूटता है नशा करने से। अरे इंसान ऑलरेडी भ्रम में है, हम ऑलरेडी इतने कंफ्यूज हैं, अपना कंफ्यूजन क्यों बढ़ाने का नशा करके। ऑलरेडी हम भगवान को भूले हुए हैं, नशा करके परिवार को भी भूल जाएंगे। नशा पान निषेध। तीसरा स्तंभ है क्या? ट्रुथफुलनेस, सत्य, ट्रुथफुलनेस। जुआ खेल के या गलत तरीके से पैसा कमा के, कोई भी गलत तरीके से पैसा कमा के हम सत्य के स्तंभ को तोड़ते हैं। ये क्या है? तो उसी बात पे हम बोलते हैं नो इलिसिट सेक्स। चौथा स्तंभ है, इतना तेज क्या है ये? सिर्फ ठीक है, खत्म होने वाला है 5 मिनट में हमारा भी। चौथा स्तंभ है क्लीनलीनेस, स्वच्छता, शौच। जब कोई अवैध संबंध करता है तो शौच के स्तंभ को तोड़ता है। इट्स ओके आई थिंक, बैठ जाओ, यू कैन डू समथिंग प्लीज प्लीज। तो अवैध संबंध इस स्तंभ को तोड़ता है। तो ये चार चीज से निषेध। अब पांचवा है, डॉक्टर क्या देगा? कुछ दवाई देगा, और दवाई देने के बाद क्या बोलेगा? नियमित सेवन करना, और क्या बोलेगा? थर्सडे को आना, फॉलो अप के लिए जरूर आना। तो सही दवा का नियमित सेवन। वो दवा क्या है? अरे 5 दिन का कोर्स कर डाला, अभी तो मेन चीज सामने आ रही है, अभी करना क्या है? उसमें भी चार चीजें हैं, एसोसिएशन, बुक्स, डाइट, चैंटिंग। फट से बोलूंगा, टाइम नहीं इस पे दूंगा, क्योंकि हम ये कब डिस्कस करेंगे? अगर आप आएंगे तो थर्सडे को। तो एसोसिएशन, बुक रीडिंग, डाइट और चैंटिंग, चार चीजें हैं उपचार। पहला है ए बी सी डी, पहला है एसोसिएशन, संघ। बोलते हैं साधु संघ, साधु संघ सर्व सिद्धि होए, सर्व शास्त्र कोए, लव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि होए। अरे क्षण भर के लिए भी साधु का संघ मिल गया ना तो पूर्ण सिद्धि हो जाएगी, क्षण भर के लिए भी। लव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि होए। एसोसिएशन, सही संग बहुत जरूरी है। अगर हर हफ्ते हम भक्तों के संग में नहीं आते हैं, हफ्ते में एक या दो बार, भक्ति नहीं कर सकते। अरे क्षण क्षण पे लोग बोलेंगे अरे क्या बकवास कर रहे हैं, मानव जीवन थोड़ी ना इसके लिए है। परिवार वाले बोलेंगे, नौकरी पे बोलेंगे, विद्यार्थी बोलेंगे, मित्र बोलेंगे, मानव जीवन थोड़ी ना इसके लिए है। तो प्रेरणा बनाए रखने के लिए, ये दिमाग पे जो कचरा जमता है उसको वॉश करने के लिए, ब्रेन वॉश करने के लिए संग जरूरी है। दूसरा बुक्स, शास्त्र सिस्टमैटिकली पढ़ेंगे। आप में से कितने लोग 700 श्लोक गीता के बराबर से पढ़े हैं पूर्ण रूप से समझ के? हा? तीन चार ही हाथ खड़े हैं। हमको शर्म आना चाहिए, क्रिश्चियन लोग भी बाइबल को अच्छे से याद कर लेते हैं काफी लोग। गीता तो पूरी तरह से, ऐसा नहीं कि हम क्रिश्चियन मुस्लिम को अलग अलग कर रहे हैं, कहने की बात यह है कि इतना उत्तम शास्त्र, चाहे आप क्रिश्चियन हैं या मुस्लिम हैं या हिंदू हैं या जो भी हैं, भगवान के शब्द मिल रहे हैं हमको, इसे पढ़ने का जीवन इसके लिए दिया है, शास्त्र पढ़ने के लिए, यथारूप इसको समझने के लिए भगवान क्या कहना चाहते हैं। फिर तीसरा है चैंटिंग। अभी आया मेन अस्त्र हाथ में और टाइम हो गया 9:20, लेकिन हमें मालूम है आप लोग आने वाले हैं कभी थर्सडे को, तो अच्छा बहुत टाइम है जब करने को। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो हम केजी में भी नहीं आए, शुरुआत हुई है। जप करेंगे, बहुत जप करना है, अरे पूरे जीवन का जप बाकी है। और यहां तो उम्र होगी कुछ लोगों की 60-70 साल, किसी की 40, किसी की 30। ये दो बच्चे ही बहुत भाग्यशाली हैं, और वो दिया है, और ये दोनों हैं, अभी तो दिया जला है जीवन का। चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र, शास्त्रों में बताया गया है। द्वापर युग, हर युग के लिए अलग धर्म दिया गया है। द्वापर युग में पंचरात्रिस्तु केवलय, विग्रह पूजा जो था मेन धर्म था, विग्रह पूजा के द्वारा। लेकिन कलयुग में किसके पास समय है? कोई बड़ा यज्ञ कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। अरे जिस प्रकार का टेलीविजन आज देखते हैं, इंटरनेट देखते हैं, कंप्यूटर पर जाते हैं, अरे हर मिनट में कुछ होता है, हर सेकेंड में आपका मोबाइल कुछ बोलता है, अरे ऐसे में कौन ध्यान लगा पाएगा, ऐसे में कौन तपस्या कर पाएगा, ऐसे में तो कुछ सरल दो। तो उसके लिए महामंत्र, जो हमारे शैतान मन को काबू में कर ले, ऐसी लिफ्ट में बिठा दे बिना हार्ट अटैक के, फास्ट प्रोसेस, फास्ट गति, दिशा सहित गति, दिशाहीन नहीं। ये सब चर्चा किए हम लोग, दिशाहीन नहीं, दिशा सहित, फास्ट। इसलिए बोलते हैं महामंत्र। इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम, ये 16 अक्षर का मंत्र कली कलमश नाशनम, कली के जितने भी कलमश हैं उसको पूर्ण रूप से नाश करता है। नातः परतर उपाय, और कोई दूसरा उपाय नहीं है, परतर उपाय कोई दूसरा उपाय है ही नहीं, शास्त्रों में बता दिया। अभी आपके मन में बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे, और कोई उपाय नहीं है, अरे ये भी उपाय है, अरे ये पूजा कर सकते हैं, अरे ये यज्ञ कर सकते हैं। अगर कोई प्रश्न आ रहा है तो उसका उत्तर मिलेगा आपको थर्सडे को, जरूर आना उस प्रश्न को लेके, क्योंकि बहुत प्रश्न रह जाएंगे बिना उत्तर के। लेकिन प्रश्न जो है वो राक्षस की तरह है, अगर वो प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो वो मानव जीवन व्यर्थ चले जाएगा। इसलिए मैंने बोला था ये कोर्स में दिल को बाहर रख के दिमाग को लेके आना, दिल बाद में, एक बार दिमाग समझ गया भक्ति क्या है, पूरा दिल भक्ति में लगा देंगे। कली संतरण उपनिषद के हिसाब से बताया है ऐसा। कलेर दोषन निधे राजन, अनेक शास्त्रों में कलेर दोषन निधे राजन, निधे मतलब सागर है, सोचिए सागर में, हम आपको बता रहे थे गुलाब जामुन की चाशनी में डुबा देंगे आपको, ऐसा गुलाब जामुन नहीं जिसके अंदर कंकर है, ऐसे ही आनंद। कलयुग तो दोष का सागर है, हम दोष के सागर में डूबे हुए हैं, तो ऐसे में क्या, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे, केवल भगवान का कीर्तन करके परम गंतव्य को प्राप्त करेंगे। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, हर चीज रिपीट करनी पड़ती है, इसीलिए थर्सडे थर्सडे बोल बोल के रिपीट कर दिया, शास्त्र भी रिपीट करते जाते हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, बार बार, और कोई तरीका नहीं, और कोई तरीका नहीं, और कोई तरीका नहीं। नास्तेव गतिर अन्यथा, और कोई गति नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अंत में आया मीठा गुलाब जामुन जो हम चार दिन से जिसकी चर्चा कर रहे हैं, गुलाब जामुन गुलाब जामुन गुलाब जामुन, अंत में आ ही गया वो गुलाब जामुन। लेकिन यहां पे खीर भी है, लेकिन उस खीर में रेत नहीं है। दिख रहा है खीर आपको? काजू भी है, किशमिश भी है, खीर भी है। सब लोग कितने खुश हो गए, वो आया तो सही प्लेट सामने। अभी बाहर क्या प्लेट है मेरे को नहीं मालूम उसमें ये आइटम है कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन उम्मीद है ये प्लेट देख के आप लोग खुश हो गए रहेंगे। तो ये है डी, डाइट। डाइट यानी कर्म आहार नहीं, ये कोई वो नहीं कि ये डाइट शरीर का डाइट नहीं, आत्मा का डाइट। इसको शब्द दिए कर्मा फ्री फूड, जिसको खाने से कर्म नहीं लगेगा, प्रतिक्रिया नहीं होएगी, रिएक्शन नहीं लगेगा, खाने से पाप नहीं लगेगा। अगर ऐसे भी जाके पेड़ से कुछ फल तोड़ेंगे और खा लेंगे तो उसका पाप भुगतना पड़ेगा। फल खाने से भी, सोचिए शाकाहारी व्यक्ति भी पाप भुगत रहा है। लेकिन जब वही भोजन प्रेम से भगवान को अर्पण करेंगे और भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे तो वो बन जाएगा डी फॉर डाइट, आहार, भक्त का डाइट, वो डाइट है। इसीलिए बोलते हैं उपचार पद्धति, ए बी सी डी लेके जाइए और थर्सडे को आ जाइए। ये सारांश, अभी बहुत समय हो गया, सारांश तो चर्चा नहीं करूंगा, बहुत सारांश कर दिया मैंने थर्सडे बोल बोल के। तो अभी शुरू हो जाइए अभ्यास के लिए, अभी हम करेंगे अभ्यास। तो हम लोग, मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, ये तो थर्सडे को डिस्कस करेंगे क्योंकि आप सब आने ही वाले हैं थर्सडे को, मेरे को मालूम है लेकिन हम सब ये जप करते हैं माला पे। तो हरे कृष्ण महामंत्र के दो तरीके हैं, जप के और कीर्तन के। आप में से कितने लोग के पास माला है? तो हम थर्सडे को सब लोग मिलके जप करेंगे। सब लोग आएंगे थर्सडे को? जोर से बोलिए हरि बोल अगर आएंगे तो। एक ही आदमी का आवाज आया मेरे को तो। आएंगे कि नहीं आएंगे? हरि बोल। तो हम साथ में जप करेंगे लेकिन आज हम मिलके कीर्तन करेंगे, ठीक है ना प्रभु जी? हरि बोल प्रभु, बृहस्पति प्रभु, कीर्तन करेंगे अभी। यस यस, ओके, समथिंग पेंडिंग, ओके। तो ये जपा जो है, दो मिनट, वो कुछ तो बताना चाहते हैं आपको। आपको लेट हो रहा है लेकिन जीवन में ये मौका एक बार ही आता है कि नहीं? चलेगा, लेट नहीं हो रहा ना? 9:27 हो गया है, 3 घंटा हो गया है, लेकिन बीच में 10 मिनट का ब्रेक था, आपने चाय पी, हर्बल टी पी, डाइट का अनुभव किया। तो ये माला पकड़ते हैं, ये हरे कृष्ण महामंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र है, इसलिए बोलते हैं महामंत्र। सारे मंत्रों की शक्तियां समा जाएं। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र, अरे बालक थोड़ा चुप हो जा जरा, इनको थोड़ा, कौन बोल रहा है पीछे से, कहां से आवाज आ रही है? देखो चुप हो गए वो। महामंत्र, तो लोग बोलेंगे अरे आपने तो हरे कृष्ण, एक पॉइंट हमारा रह गया, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बोले आपने तो महामंत्र दे दिया, कृष्ण के बारे में बात करी, बाकी सबको तो भूल ही गए। ठीक है आपने बोल दिया, वो कार्यालय में ये मैनेजमेंट संभालते हैं, ये डिपार्टमेंट संभालते हैं, लेकिन कृष्ण को इतना दे दिया, बाकी सब मंत्र जप कर रहे हैं उसका क्या? बाकी सब जो देवता हैं उनका क्या, उनके बारे में क्या? अरे वो दुखी हो जाएंगे। पहली बार जब मैं भी हरे कृष्ण महामंत्र उठाया तो पहले, उससे पहले हम दुर्गा की पूजा करते थे, तो मैं हरे कृष्ण उठाया और बार बार दुर्गा जी की तरफ देखूं, अरे ये तो नाराज हो जाएंगी, ऑलरेडी हाथ में त्रिशूल है, एक और त्रिशूल चलाएंगी, मेरा मंत्र छोड़ दिया। प्रभु किसका वेट कर रहे हैं हम? ओके ओके, ठीक है ठीक है, तो घबरा जाएंगी वो। तो ये जो देवता पूजा है, शास्त्र देवता के खिलाफ नहीं है, देवता भगवान के प्रतिनिधि हैं, उनको हम पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं, उनकी भी सेवा करनी चाहिए पूर्ण रूप से। लेकिन एक व्यक्ति को यह ज्ञान होना चाहिए कि किसका क्या अस्तित्व है, किसकी क्या पोजीशन है। एक बार एक राजा था, वो किसी तो गांव में गया, बोला आज जो चाहिए आपको दूंगा, जो भी चाहिए, जिस भी व्यक्ति वस्तु की आवश्यकता है। तो एक किसी के घर पे गए, वो बोले ऐसा है मैं इतना गरीब हूं, मेरी बेटी की शादी के लिए धन नहीं है। तो मंत्री को बोले इसको जितना धन चाहिए दे दो। दूसरा व्यक्ति के पास गए, बोले ऐसा है मेरे पास कोई अच्छा घर नहीं है, मेरे घर टूट रहा है, कोई छोटी सी कुटिया है, घर बनवा दीजिए, इसको घर दे दीजिए। तीसरे के पास गए, अरे मुझे नौकरी नहीं है, इसको नौकरी, चलो इसके लिए नौकरी ढूंढी जाए बढ़िया सी, इसकी योग्यता के अनुसार। माताजी बोली एप्टीट्यूड के अनुसार उसको बिजनेस दिया जाए, है कि नहीं, वो भी मिल गया उसको। चौथे आदमी के पास गए, वो बोला हे महाराज, मानता हूं आप कितने दयालु हैं, कितने करुणामयी हैं, इतना सब दे रहे हैं, मुझे केवल आपकी दोस्ती चाहिए। बोले ये क्या बात हुई, दोस्ती चाहिए, ठीक है आपके दोस्त बन गए हम। चला गया अपने राज्य में, घर चला गया। जब राजा गए तो अगले हफ्ते पूछा तो वो व्यक्ति की बेटी की शादी हुई कि नहीं हुई, हां महाराज हो गई। और वो दूसरा व्यक्ति, उस घर बना भी बना, हां महाराज बन रहा है, सब धन दे दिया उसको। तीसरे के पास गए, तीसरा क्या मांगा था, नौकरी, नौकरी मिली कि नहीं मिली, हां महाराज अरे वो आपकी सभा में यही तो नौकरी करता है, वही तो आपकी सब सप्लाई करता है। अरे वाह बढ़िया। अच्छा वो चौथा व्यक्ति क्या बोला था, व्हाट हैपेंड, चौथा व्यक्ति क्या बोला था, बोला वो तो आपकी मित्रता मांगा था। मित्र, अरे यार अभी उसको मित्रता दी है तो मित्रता पूर्ण करनी पड़ेगी, तो उसके घर जाना पड़ेगा, घर पे भोजन करना पड़ेगा, घर पे कुछ दिन रहना पड़ेगा, ये सब करना है। तो बोले अरे इतना सब करना है, चलो करेंगे, उसके घर पर जाके रहेंगे, भोजन करेंगे, साथ मित्रता करेंगे, ठीक है। तो फिर जल्दी है कुछ क्या, ओके ओके, तो बोले ठीक है करेंगे। अभी राजा को एक गरीब व्यक्ति के घर पे भोजन करना है, रहने के लिए जाना है, उसके साथ समय बिताना है, उसके घर जाना है, कैसे जाएगा। अभी राजा को घर पे जाना है तो एक सड़क बनाई उसके महल से उसके घर तक, उसके घर पे रहना है तो घर बनाया, बंगला बनाया, उसके घर पे ऐसा कमरा बनाया जहां पे राजा रह सके, उसके साथ बैठ के भोजन करना है तो उसको अच्छे वस्त्र दिए, उसको उसका किचन भर दिया अच्छे अच्छे पकवानों से, क्योंकि राजा अकेला तो जाएगा नहीं, राजा के साथ सब लोग जाएंगे, मिनिस्टर भी जाएंगे, परिवार जाएगा, राजा की पत्नी जाएगी, राजा के बच्चे जाएंगे, क्योंकि मित्र के घर जा रहे हैं ना। तो बोले अच्छा, उसने एक मित्रता मांग के सब कुछ मांग लिया। तो एक कंपनी के सीईओ से अगर आपने दोस्ती कर ली तो सब कुछ आ गया उसमें, अरे वो आपके मित्र बन गए तो धन आ गया, सब कुछ आ गया, जो परम गंतव्य मिल जाएगा आपको। लेकिन फिर चिंता होती है, फिर चिंता होती है कि बाकी लोग तो गुस्सा नहीं हो जाएंगे, अरे बाकी लोग भी पीछे पीछे सेवक की तरह आ जाएंगे, बड़े आनंद प्रफुल्लित होंगे, दुर्गा देवी बड़ी प्रफुल्लित होंगी कि अरे जिसके धाम में मैं तुम्हें भेजने की कोशिश कर रही थी त्रिशूल मार मार के, फाइनली तुम जा रहे हो, फाइनली तुम उसकी भक्ति कर रहे हो। गणेश जी बोलेंगे अरे जिसके गुणों के बारे में मैंने पूरे शास्त्र गीता और भागवत लिखी, फाइनली तुम्हारी बुद्धि में आया कि वो शास्त्र किसकी भक्ति सिखा रहे हैं। शिव जी बोलेंगे अरे जिन पे ध्यान लगा के मैं बैठा हूं, फाइनली तुमको समझ आया वो व्यक्ति कौन है, मेरे परम आराध्य देव। शिव जी वैष्णवानाम यथा शंभु, ऐसी भक्ति करते हैं कि भगवान बोलते हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। तो जब ऐसे सब देवता लोग देखेंगे, सब लोग मिलके आशीर्वाद देंगे, अरे जाओ पूरी खुशी से जाओ, हम लोग भी आपको असिस्ट करेंगे, पूर्ण रूप से असिस्ट करेंगे, जो चाहिए वो देंगे। सनातन गोस्वामी तपस्या कर रहे थे, भगवान के नाम का भजन कर रहे थे वृंदावन में, बड़े मच्छर काट रहे थे उनको, तो बोले हम यहां से चले जाते हैं, बड़े मच्छर हैं यहां, भजन नहीं होता। तो मच्छरों के देवता ने बोला सब मच्छरों को हटा दो यहां से, इनका भजन नहीं हो रहा, लेकिन आपके कमरे के मच्छर नहीं जाएंगे, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, मीरा रोड के मच्छर भी वैसे के वैसे ही रहेंगे। लेकिन बात यह है कि जब सीईओ जो मुख्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है उनकी भक्ति करेंगे तो सबका आशीर्वाद मिलेगा। तो अगर कोई किसी की पूजा करता है उनको पूर्ण सम्मान, लेकिन परम आराध्य श्री कृष्ण से दोस्ती करेंगे, जो भगवान दोस्त बन जाएंगे तो और क्या चाहिए, और कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं। तो उन भगवान को अभी हम कीर्तन से भक्ति भाव से उनके नाम का कीर्तन करेंगे।
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Ram.